الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى اپنی اس نشست میں بات کریں گے اس علم کی جو ہم انشاءاللہ و تعالی حاصل کرنے جا رہے ہیں. اس علم کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلت دی، بڑی عظمت والا یہ علم ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس قدر عظمت والی علم کو لینے جا رہا ہے، تو تبھی وہ اس کے لیے پوری دل جمعی کے ساتھ وقت بھی دے گا، محنت بھی کرے گا. لیکن جب کسی علم کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو پھر انسان اس کے لیے ہاف ہارٹیڈلی یا بددلی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا جس چیز کی وہ حامل ہے. ایسے ہی سمجھے، کسی کا بچہ اگر کسی بڑی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے تو وہ اس پر کتنا فخر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن جب اہمیت پتہ نہ ہو تو پھر انسان ان چیزوں کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے، ان کو ویلیو نہیں دیتا. ہم جس کلام کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، اور اس کلام کی، اس علم کی اہمیت اس بات سے سمجھ لیجئے کہ یہ علم دوسرے تمام علوم پر، چاہے آپ کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی میڈیسن پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی انجینئرنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ بڑے فلسفی ہیں، کوئی بھی علم دنیا کا اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم وہ علم ہے جس کی تمام علوم پر اس طرح سے حیثیت ہے، اس طرح سے اس کے مقابلے میں تمام علوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مقابلے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ اس کی مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کی مخلوق میں سے کتنا ہی کوئی اوپر ہو، اعلیٰ ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح دنیا کا کوئی علم بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، یعنی اس قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس کو حاصل کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ہم کتنا بڑا اور کتنا عظیم کلام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलो अनजलना हादल कुरआन अला जबले लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह। लो अनजलना हादल कुरआन अला जबले, यानी अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर भी उतारते तो ये वो कलाम है कि पहाड़ भी दब जाता और रेजा रेजा हो जाता। यानी इस कुरान की अहमियत को आप समझें कि ये कुरान इस कदर बाबरकत कलाम है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपनी तजल्ली पहाड़ पे डालता हूँ, अगर ये इसको सह सकता है तो तू मुझे देख सकेगा। और पहाड़ अल्लाह ताला की एक तजल्ली को भी सह नहीं सका और रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ये देख के ही बेहोश हो गए। सोचें, ये अल्लाह ताला की एक तजल्ली जैसे पहाड़ पे पड़ी और पहाड़ रेजा रेजा हो गया, इसी तरह अल्लाह ताला का कलाम किसी पहाड़ पे भी डाल दिया जाए तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला के कलाम को मामूली ना समझें और इसके इल्म को एक फारिग औकात का काम ना समझें कि ये जो लोग फारिग हैं उनके पास कोई और काम नहीं तो चलो ये इल्म लेने बैठ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये वो इल्म है जो पैगंबर का असासा, पैगंबर की विरासत है। नबी अलैहिस्सलाम ने विरासत में कोई महल नहीं छोड़े, कोई बहुत बड़े खजाने नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी विरासत में क्या छोड़ा, इल्म। फरमाया अंबिया की विरासत क्या है, इल्म है। और ये तो वो बाबरकत कलाम है कि जिसको जो हासिल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। याद रखिए, जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है, बड़ा कठिन है, इस पे चलना आसान नहीं है, आजमाइशों से घिरा हुआ है, इसके रास्ते में बड़ी यानी मुश्किलें हैं, मुशक्कतें हैं, बड़ा कुछ सहना पड़ता है, आसान नहीं है ये, कदम कदम पे मुश्किल आता है इसमें, ये कोई फूलों की सेज नहीं है कि आराम से हम चलते हुए जन्नत तक पहुंच जाए, ये वाकई ही ऐसा रास्ता है जो टफ है, और इसके लिए इंसान को इल्म की जरूरत है। जैसे जैसे इल्म आप लेते जाते हैं, आप समझ लें कि वो रास्ता आपके लिए आसान होता जाएगा, कदम रखने आसान हो जाएंगे, अगला कदम उठाना आसान हो जाएगा, और आप आसानी से चलते हुए इस रास्ते पे जन्नत तक पहुंच सकते हैं। और सोचें, अगर कोई शख्स रास्ता ही ना जानता हो, और मसलन है किसी जगह उसने जाना है, उसका रास्ता नहीं पता, और वो गाड़ी लेके चल पड़ा, तो क्या होगा, कभी इससे पूछेगा, कभी उससे पूछेगा, कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा, संत का पता नहीं, कहीं कहीं भटकेगा, फिर कहीं और भटकेगा, पता नहीं मंजिल तक वक्त पे पहुंचेगा भी या नहीं, वो लॉस्ट होने का उसका बहुत चांस है, वो लॉस्ट हो जाए, और यही हाल उसका है जो जन्नत के रास्ते पे जाना चाहता है, जन्नत को अपनी मंजिल बनाना तो चाहता है, मगर इसके रास्ते का उसको कोई इल्म नहीं, और वो भटकता फिरता है, कभी किसी से पूछता है, कभी किसी से पूछता है, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। अल्लाह ताला ने तो जन्नत के रास्ते का इल्म हमें दे दिया, हमें बता दिया, और ये बड़ी उसकी रहमत है कि उसने ये रास्ता हमें समझा दिया और इस रास्ते का प्लानर हमें दे दिया, इसका प्रोग्राम हमें बता दिया ये कुरान की शक्ल में, और जैसे जैसे इसको फॉलो करते रहेंगे जन्नत का रास्ता आसान होता चला जाएगा। तो हर दिन आप समझे कि हर सबक जब आप लेंगे तो उस पे आपका जन्नत का रास्ता मजीद आसान होगा, आपको समझ आएगी जिंदगी में फैसले कैसे करने, आपको समझ आएगी कि इस चीज के अंदर क्या हिकमत थी, आपको मुश्किल को फेस करना आ जाएगा, चैलेंजेस का मुकाबला करना आ जाएगा, आपको अपने मसाइल का हल मिलने लगेगा, आपको अपने सवालों का जवाब मिलने लगेगा। इस तरह से जन्नत का रास्ता आपके लिए हर दिन आसान होता जाएगा। कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है उस शख्स के ऊपर जिसको वो ये इल्म हासिल करने की तौफीक देते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह ताला जिसके लिए खैर चाहता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसको दीन का फहम दे देता है, दीन की समझ दे देता है। यानी फहम कहा गया, समझ कहा गया, ये नहीं कहा गया कि वो उसको दीन का रट्टा लगाना, हिफ्ज करना ये अता कर देता है। बेशक याद करना, हिफ्ज करना बड़ी बात है, लेकिन गया अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है। समझ ले, अल्लाह ताला ने आपके साथ भलाई का इरादा फरमा लिया तभी आपको यहाँ पे बिठा दिया, तभी आपको अल्लाह ताला ने ये रास्ता दिखा दिया, तभी आज आपने ये फैसला कर लिया कि मैं ये इल्म लूंगी। मगर ये याद रखिएगा कि इस रास्ते पे चलने वाले लोग आ तो जाते हैं, मगर बी केयरफुल, सब मंजिल तक नहीं पहुंचते, सब इसको मुकम्मल करने तक नहीं जाते। क्या वजह है? रास्ते में शैतान उनको उचक के ले जाता है, बाज दफा उनकी दोस्तों के थ्रू उन तक पहुंचता है, बाज दफा उनकी फैमिली के थ्रू उन तक पहुंचता है, बाज दफा खुद वसवास डालता है कि ये मैं किस में फंस गई, लोग इतने मजे कर रहे हैं, लोग पार्टियां कर रहे हैं, लोग अब इधर घूम फिर रहे हैं, और मैं तो पढ़ रही हूँ, और ये तो मेरे पर टेस्ट आ गया, और इसकी मुसीबत आ गई, और ये मुश्किल पड़ गई मेरे ऊपर, मुझे क्या मुश्किल है, मैं भी आराम करूं, मैं भी ड्रामा लगा लूं, मैं भी जरा थोड़ी देर सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग कर लूं। बहुत सारे ख्याल आएंगे आपको, लेकिन उस वक्त समझ जाइएगा ये शैतान की तरफ से, कभी दोस्तों की तरफ से आएगा, तुम्हें क्या मुसीबत हो गई, तुम क्यों ये पढ़ रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे कौन सी नौकरी मिलनी, इससे कितने पैसे मिलेंगे, इससे क्या होगा, तब भी समझ जाइएगा ये शैतान इनके थ्रू आ रहा है। कभी घर वाले कहेंगे, घर में से कोई कह सकता है अब आपको टाइम नहीं हमारे पास लिए, अब आपके पास ये मशगले आ गए, ये क्या शुरू कर दिया है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि ये है जन्नत का रास्ता। तो कौन है जो हमें जन्नत के रास्ते से रोकना चाहता है? वो शैतान है। आप पढ़ेंगे इसी कलामे पाक में कि शैतान इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि वो खुद वहां पर एंड अप हुआ, वो चाहता है कि सबको वहां ले जाए। ऐसे में वो जरूर बैठेगा जन्नत के रास्ते में, दाएं से भी आएगा, बाएं से भी आएगा, आगे से भी और पीछे से भी, वो छोड़ेगा नहीं। बी केयरफुल। चलेंगे तो बहुत सारे लोग इस काफले में, मगर बहुत सारे लोग फिर इस रास्ते को छोड़ के और रास्तों पे निकल जाएंगे, टेम्पटेशंस राइट एंड लेफ्ट से उनको अट्रैक्ट करेंगी, टेम्पटेशंस बहुत आएंगी, बहुत चीजें आएंगी, कभी दो चार क्लासें मिस हो जाएंगी तो फिर ये ख्याल आएगा चलो छोड़ ही दो, अब क्या फायदा करने का, अब तो मसरूफियत और ज्यादा बढ़ गई है। देखें जिंदगी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगी, कभी खुशी के दिन होंगे, कभी कोई परेशानी के दिन भी आते हैं, कभी मुश्किल लगेगा, कभी आसानी के दिन भी आएंगे, कभी एकदम बहुत कोई बड़ी मसरूफियत आ जाएगी जिंदगी में, किसी की मूविंग हो रही है, किसी का बेबी हो गया, किसी के घर के अंदर कोई और मेहमान आ गए, कोई कहीं वेकेशन पे चले गए, कभी कोई शादी आ गई, तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी। मगर आज ये इरादा कर लेना है कि ये जो इल्म जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, मैंने इसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि किसी ने बड़ी प्यारी बात की, मुझे बहुत पसंद आई, कि आप कुरान को नहीं चुनते, कुरान आपको चुनता है। सुभान अल्लाह, आप समझते हैं ना, मैंने ये कोर्स शुरू किया है, मैंने रजिस्टर किया है, ने कुरान ने आपको चुना है, अब आप छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि इस रास्ते के अंदर जो चलता रहेगा वो ही मंजिल तक पहुंचेगा। हमारी रफ्तार गो की बहुत स्लो है, एक कछुए की रफ्तार जैसी है, हफ्ते में एक दफा हमने लेसन लेना, बहुत छोटी रफ्तार से हम चल रहे हैं। रोज नहीं आपको बिठाया जाता, रोज क्लास नहीं होती, ऐसे भी कोर्सेज हैं जहां पे रोज क्लासेस होती हैं, आपको रोज क्लास नहीं दी जाती, लेकिन छोटी रफ्तार से भी जो चलता रहेगा ना वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। हाँ कहीं बैठ गए, कहीं थक गए, कहीं खैर बात कह दिया तो मंजिल नहीं मिलने वाली। अल्लाह हू अकबर। और ये इल्म इतना फजीलत वाला है, इब्ने अब्बास से रिवायत है, एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कुरान का कौन सा इल्म अफजल है। बहुत सारे उलूम है ना, आप ग्रामर भी पढ़ सकते हैं, आप हिफ्ज भी कर सकते हैं, आप मसलन है कि कोई और इसके अंदर, यानी इसके और कोई बात इसमें कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम के माने का फहम हासिल करो, उसके मुश्किल अल्फाज के माने तलाश करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम के माने की मार्फत हासिल करने को पसंद करता है। इमाम बहकी ने ये रिवायत की है कि अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि तुम इसके माने को जानो, क्योंकि माना जानेंगे तो रब की पहचान होगी, माने का पता होगा तो रब का पता चलेगा। और ये रहमान की रहमत की अलामत है कि वो कुरान सिखा दे। और रहमान अल्लम अल कुरान, रहमान उसने कुरान सिखाया, ये उसकी रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। और रहमान के बाद ये नहीं फरमाया उसने तुम्हें खाना दिया, उसने तुम्हें पीना दिया, उसने तुम्हें घर बार दिया, उसने तुम्हें औलाद दी, और रहमान अल्लम अल कुरान, ये उसकी रहमत की निशानी होती है कि वो कुरान सिखा दे किसी को। समझ लें आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है कि उसने आपको कुरान के लिए चुन लिया, इसका दरवाजा खोल दिया। वही इल्म देने वाला है, वही इल्म सिखाने वाला है, तो इसलिए इसको बड़ी बात समझे, इसको एक मामूली चीज ना समझिएगा। और अगर आपको इल्म की मजलिस का शौक है और इसमें दिल लगता है और आप भाग भाग के उसमें शरीक होते हैं, जहां आपको इल्म मिल रहा हो वहां जाते हैं, या इल्म हासिल करने के लिए आप किताब खोलते हैं, कुरान खोलते हैं, तो ये आपकी नेकी की अलामत है, क्योंकि ये देखें आपने सुन लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जिससे खैर का इरादा करता है उसको फहम दे देता है दीन का, यानी उसको भी शौक लग जाता है, उसको तौफीक भी मिल जाती है, वो आ भी जाता है इस तरफ, अल्लाह ताला चाहता है उसको ये खैर मिले, इसीलिए उसके दिल में शौक और पसंदीदगी होती है ऐसी मजलिसों की। और अगर दिल नहीं लगता, अगर बोर लगती है और इल्म का कोई शौक नहीं है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, फिर अल्लाह ताला से दिल मांगे, फिर अल्लाह ताला से खैर मांगे। और कुरान खुद कहता है एलमू वालमू लितालमू, इल्म हासिल करो ताकि तुम जान जाओ, तो ये कुरान खुद हमें इल्म की तरफ बुलाता है, इल्म हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं, इसके लिए एक बहुत बड़ी बशारत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब इंसान इल्म के रास्ते पर चलता है तो फरिश्ते अपने पर उसके लिए बिछा देते हैं। ये प्रोटोकॉल फरिश्तों की तरफ से है, जो पाकीजा मखलूक है, गुनाहों से पाक है, मकाम देखे इल्म हासिल करने वाले का, कि जब वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे भी चला, वो रास्ते पे अपने पर बिछा रहे हैं। वो रेड कारपेट से कहीं ज्यादा बड़ी बात है कि आप ये सोच लें कि किसी बड़े के लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है तो उसको, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसको ये बहुत बड़ी इज्जत अफजाई की जाती है। लेकिन जिसकी इस इज्जत अफजाई करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लगा दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आगे पर बिछाओ इनके, उनका मकाम और मर्तबा सोचिए। और आपने एक और बात कभी नोट की है कि कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि फरिश्ते कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि फरिश्ते कुरान पढ़ रहे हैं। हमें ये मिलता है फरिश्ते रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फरिश्ते नमाज पढ़ रहे हैं कहीं, या फरिश्ते जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं नहीं मिलता कि फरिश्ते कुरान पढ़ रहे हैं। तो उलमा कहते हैं ये वो चीज है, ये कलाम वो है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी नहीं लगाई कि वो कुरान को पढ़ें, इसीलिए उनको इतना शौक है कि वो कुरान को सुने, बहुत शौक है। जब भी तो जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्तों की जमात वहां पे जमा हो जाता है, फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं, फरिश्ते एक दूसरे को बुलाते हैं जिक्र की मजलिस में कि आओ यहां पे अल्लाह ताला का जिक्र किया जा रहा है। और तो और आपने वो हदीस अगर सुनी हो, हजरत सैयद बिन हुजैर एक मरतबा कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, रात का वक्त था, तो उनका घोड़ा जो पास ही बंधा हुआ था उसने उछलना कूदना और भिदकना शुरू कर दिया, तो आपने वही कुरान की तिलावत छोड़ दी, घोड़ा सीधा हो गया, आपने फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़े ने फिर भिदकना शुरू कर दी, आपने फिर पढ़ना छोड़ दिया, घोड़ा फिर ठीक हो गया, तीसरी मरतबा भी यही हुआ। तो चूंकि उनका बेटा यहया घोड़े के पास ही लेटा हुआ था, इसलिए उनको ये डर हुआ कि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, तो कुरान का पढ़ना बंद करके उसको उठा के रख दी, आसमान की तरफ देखा कि क्या वजह थी, क्या क्या हुआ है, तो वहां पे उनको कुछ नजर आया। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके वाकया बयान किया, आप सुनते जाते थे और फरमाते जाते थे, फिर उसैद पढ़ते चले जाओ। उसैद ने कहा या रसूल अल्लाह, तीसरी मर्तबा के बाद तो यहया की वजह से मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया, अब जो मेरी निगाह उठी तो देखता क्या हूं, एक नूरानी चीज है, सायादार बादल की तरह, और इसमें चरागों की तरह रोशनी है। आप सोचिए जैसे एक बादल हो ना, जैसे साया करने वाला बादल, गहरा बादल होता है, और उसके अंदर समझ लें चराग जल रहे हैं, कितना खूबसूरत मंजर। आप देखें कहीं कोई शैंडलियर, आप सोचें सोचें इस तरह से एक शेंडली और बहुत खूबसूरत फानूस कहीं आसमान में, तो कहते हैं चरागों की तरह उसमें रोशनी थी, बस मेरे देखते ही देखते वो ऊपर को उठ गई। आपने फरमाया जानते हो वो क्या चीज थी, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज को सुन के करीब आ गए थे, अगर तुम पढ़ना बंद ना करते तो वो सुबह तक यूं ही रहते और हर शख्स इनको देख लेता, वो किसी से ना छुपते। सुबहान अल्लाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, लोगों ने उनसे कहा कि पिछली रात हमने देखा है कि सारी रात हजरत साबित का घर नूर का बुका रहा, जैसे नूर है और चमकदार रोशन चरागों से चमकता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद रात को उन्होंने कुरान पढ़ा होगा और उसमें खास तौर पर सूरह बकरा पढ़ी होगी। अल्लाहु अकबर, इस तरह फरिश्ते कुरान की मजलिस के लिए या कोई कुरान पढ़ता है उसके लिए ऐसे आ जाते हैं, अकेला पढ़ रहा है या मजलिस में बैठ के पढ़ रहा है, इतनी बाबरकत वो मजलिस हो जाती है। और फिर हर वो चीज जो आसमानों में और जो जमीन में, अल्लाह ताला ने हर एक को हुक्म दे दिया है कि वो दुआ करे इल्म हासिल करने वाले के लिए। जो इल्म वाला है उसके लिए, हत्ता के पानी की मछलियां भी उसके लिए दुआएं करती हैं, और चींटियां अपने बिलों में उसके लिए दुआएं करती हैं। हम लोगों को कहते फिरते हैं हमारे लिए दुआ करो, कितना खुशकिस्मत है वो कि जिसके लिए समुंदर की मछलियां दुआएं कर रही हैं। हमें हमें पता भी है समुंदर में कितनी मखलूक है, कितनी मछलियां हैं, कितने चरिंद परिंद हैं, जमीन की मखलूक पूरी, कीड़े मकोड़े दरिंदे सब, इनकी तादाद को भी गिनना हमारे लिए मुमकिन नहीं। और आसमानों में और फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ी दुआएं करते हैं जो कहीं अपनी जॉब पे बैठा हुआ है, जो कोई अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, जो कोई कोई बिजनेस कर रहा है, या जो औरत सारा दिन खाना पका रही है किचन में, या जो बाजारों में शॉपिंग कर रही है, उनके लिए थोड़ी दुआएं करते हैं। ये उन खुश किस्मतों के लिए दुआएं करते हैं ना जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकले। अल्लाह अकबर। और एक और इनाम, ये सोच लें कि हम जब किसी को इबादत गुजार बहुत देखते हैं तो हम मुतासिर होते हैं कि फलां बड़ा इबादत गुजार है, लेकिन याद रखें जो इल्म हासिल कर लेता है ना उसकी फजीलत इबादत गुजार पे भी ऐसी है जैसी 14वीं रात का चांद तारों के दरमियान। 14वीं रात का चांद जो है ना वो ऐसा होता है, अपने फुल मून देखा होगा, उसमें आप रास्ता भी देख सकते हैं, इतनी रोशनी होती। सितारों से रास्ते नहीं आप देख सकते, उनकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जो इबादत गुजार है वो तारों की तरह चमकते तो हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन 14वीं रात के चांद की तरह नहीं। जो इल्म हासिल करता है वो इस तरह है जैसे 14वीं रात का चांद। तो ये छोटी बात है क्या? फिर आप देखें कि इन लोगों को जो इल्म हासिल करने वाले हैं अल्लाह ताला ने बेस्ट करार दिया, बेहतरीन है जो कुरान सीखे और सिखाए, बेहतरीन बेस्ट। क्या किसी और को बेस्ट कहा? वो जो कि यानी कोई और भी काम करने वाला है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई इंजीनियर है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई घरदारी वाली है औरत, चाहे कोई भी है, किसी को भी कहा कि ये बेस्ट है? नहीं। किसके लिए ये बशारत है? कुरान पढ़ने वाले के लिए। कितनी बड़ी है बशारत है कि वो बेस्ट है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो अन करीब फितने बरपा होंगे। तो हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह इन फितनों से निकलने का क्या रास्ता है? आप भी परेशान होते होंगे कि आजकल कितने फितने, तो आपने इसकी पहले ही पेशीन गोई कर दी थी कि फितने आएंगे। तो देखिए रहनुमाई भी फरमा दी हमें, हमें फितनों में छोड़ नहीं दिया, फितने होंगे हर तरफ। आज सब मानते हैं कि हर तरफ फितने ही फितने, कितने फितने, हम सुबह देखते हैं और फितने हैं, रात को और फितने हैं, हर दिन नई से नई चीजें हम अपने सामने आते देख रहे हैं। और फिर वो लोग लॉस्ट हो जाते हैं जिनको ये नहीं पता कि इस फितने से निकलने का रास्ता क्या है। तो हजरत अली ने पूछा कि इससे रास्ता क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब, इसमें तुमसे पहले लोगों की खबरें हैं और तुम्हारे बाद वालों के लिए पेशीन गोईयां हैं, ये तुम्हारे दरमियान हकम है यानी फैसला करने वाली। ये बेफायदा नहीं है कि आपने इसको उठा के ताक में रखा हुआ है, आपने अपने शेल्फ्स में रखा हुआ है और आप सोचते हैं जब फारिग होंगे कभी तो तब भी इसको पढ़ लेंगे। ये बेफायदा नहीं फरमाया। जिस मुतकब्बिर ने इसको छोड़ दिया अल्लाह ताला उसको हलाक कर देगा। आप सोचेंगे हम तो मुतकब्बिर नहीं है, वो मुतकब्बिर ही तो है जो ये समझता है हमें सब आता है, हमें क्या सिखाओगे। वो मुतकब्बिर ही तो है जो कहता है हमें इस इल्म की जरूरत नहीं। हम खुद समझते हैं कि आज के दौर में क्या करना चाहिए। वो मुतकब्बिर ही तो है जो अल्लाह ताला की हिदायत को अपने लिए जरूरी नहीं समझता। वो मुतकब्बिर ही तो है जिसने ये सोचा कि मुझे इसके लिए वक्त नहीं, क्योंकि ये फालतू की चीज है। सब मुतकब्बिर हैं, इनके अंदर अपनी बड़ाई है, तभी तो इनको जरूरत महसूस नहीं कि इस कुरान की जरूरत है हमारी जिंदगी। और तकब्बुर क्या होता है कि इंसान इस कलामे पाक को, जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत नामा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज, एक लेटर है मेरे और आपके नाम, उसको अपने लिए बिल्कुल जरूरी महसूस ना करें और उसके बगैर ही समझे कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत। आगे हदीस सुने, जिसने इसके अलावा किसी और चीज में हिदायत को तलाश किया, अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देगा, गुमराही में रहने देगा उसको। जिसने सोचा ना कि इस हिदायत की क्या जरूरत है, हिदायत के लिए तो मुझे गाइडेंस यहां से मिले, जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मैं आज के फलसफियों से पूछूं, आज के जो बड़े इंटेलेक्ट्स हैं उनसे पूछूं, आज के जो बड़े अब समझे जाते हैं, बड़े बड़े लोग, PhDs और फलां प्रोफेसर और फलां, उनसे पूछूं। कुरान जो 1400 साल पहले का कलाम है, ये मुझे क्या रास्ता दिखाएगा, इसकी तो मुझे जरूरत नहीं। जिसने इसको छोड़ के किसी और जगह पे अपनी जिंदगी गुजारने का रास्ता लिया ना, अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देगा। फिर फरमाया, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। कैसे? वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है जिसका हदीस में आता है एक सिरा अल्लाह ताला ने जमीन में उतारा है, एक उसके पास है। आप इस रस्सी से मजबूती से जुड़ जाएंगे तो आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बन गया। पकड़ लो मजबूती से, ये हुक्म है कुरान में, इसको मजबूत पकड़ो। क्या ये मजबूत पकड़ना है कि हम इसको समझे ही ना, हम इसको जाने ही ना, हम इसके अंदर तदब्बुर ही ना करें? अल्लाह ताला ने फरमाया, अफला ये तदब्बरून अल कुरान, क्या तुम अल्लाह के कुरान में तदब्बुर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात होते। ये अल्लाह का कलाम है, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं इसके अंदर तदब्बुर करने की। फिर आगे हदीस सुने, ये हिकमत आमेज नसीहत है, ये सिराते मुस्तकीम है, ये जिस सिराते मुस्तकीम, ये हदीस आपको सुना रही हूं मैं, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये सिराते मुस्तकीम है, यानी जिस सिराते मुस्तकीम को आप रोज दिन में कितनी दफा मांगते थे, ए दिन सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ सुन ली आज। क्या आपको सिराते मुस्तकीम को समझने और इस पर चलने का नुस्खा दे दिया, इसको समझने के लिए आपको बिठा दिया, ये है सिराते मुस्तकीम। आज तक मांगे जा रहे थे ना, एक दिन सिरातल मुस्तकीम, वो पता नहीं कौन सी एक कबूलियत की घड़ी थी जिसमें हमारी ये दुआ सुनी गई कि अल्लाह ताला ने हमें आज सिराते मुस्तकीम पे लाके खड़ा कर दिया, अब हमें चलना है इसके ऊपर, दिखा दिया है हमें, हमारे सामने है ये रास्ता। फिर आगे, इसकी वजह से ख्वाहिशात में कजी नहीं आएगी, किसी जुबान का कलाम इसके मुशाबे नहीं हो सकता, उलमा इससे कभी सैर नहीं हो सकते, यानी आपका कभी दिल नहीं भर सकता। ये जो लोग कहते हैं ना, तुमने एक कोर्स कर लिया, आप दोबारा करने की जरूरत है क्या, हर बात यही करते रहना। अगर आपने इल्म लिया हो इसका, तो आपका कभी इससे पेट नहीं भरेगा, कभी जी नहीं भरेगा। ये हदीस है, ये मैं नहीं अपने अल्फाज बता रही है आपको, ये मेरे नबी के अल्फाज हैं, उनके से ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। जो आपको कहते हैं ना, आपका पेट भर जाना चाहिए, अब तो एक कोर्स कर लिया आपने, दो कोर्स कर लिया, आप कितना पढ़ेंगे? अगर आप वाकई इल्म वाले हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ये आपके लिए होगा कि आप कभी जी भरेगा ही नहीं इससे। फिर आगे हदीस सुने, ये लंबी हदीस है, आगे सुने, बार बार पढ़ने के बावजूद इससे उकताहट नहीं होगी, थकेंगे नहीं, यानी आप उकता जाए, लो जी हमने तो पहले ही भी पढ़ा हुआ था, अब इसमें और क्या नई बात होगी, हर दफा ये आपको नए से नए अंदाज में आपके सामने आएगा, क्योंकि ये मोजज़ा है, ये किताब नहीं जो आप समझते हैं, जैसे मेरे शेल्फ में और किताबें पढ़ी, इसी तरह कुरान भी पढ़ा हुआ, सो वॉट, हाँ बस बड़ी मुकद्दस किताब है, चलो जी उसको चूम के रख दिया, नहीं आप समझे नहीं है ये बात कि ये किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। सुभान अल्लाह, ये सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, ये अल्फाज उसने फरमाए, रब्बुल आलमीन के अल्फाज जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो अल्फाज दोहराए, फिर सहाबा ने पढ़े। मुझे बताएं जितनी आपकी शेल्फ में बुक्स हैं कौन सी किताब है जो अल्लाह ताला ने फरमाई हो? कोई भी नहीं, कोई भी अल्लाह ताला के अल्फाज नहीं है। कैन यू इमेजिन कि रब्बुल आलमीन ने ये तिलावत किया हो कुरान और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सुना हो? सुभान अल्लाह, ये वो कलाम जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, कौन सी और किताब है जिसको आप तवज्जो देते हैं जो इससे बढ़ के है? वो चाहे वो बिजनेस बनाने की है, वो चाहे कोई अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने की, बहुत सारी की टू सक्सेस फलां और ये किताबें कितनी तरह की होती, वो चाहे हिस्ट्री का इल्म है, वो चाहे फिलोसफी का इल्म है, कौन सा इल्म है मुझे एक भी बताएं जो इसका मुकाबला कर सके? तो इससे कभी भी बार बार पढ़ने के बावजूद आप कभी थकेंगे नहीं, और इसके राज कभी खत्म नहीं होंगे, इसके असरार कभी खत्म नहीं होंगे कि नहीं से नहीं बातें जब आप पढ़ोगे ना आपको नया लगेगा। मैंने आपको बताया ये मौजजा है, मौजजा तमाम अंबिया के मौजजात तो उनके साथ खत्म हो गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत चूंकि कयामत तक के लिए, इसलिए आपका मौजजा भी कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने बाकी रखा, इसकी हिफाजत फरमाई। सोचें नबी अलैहिस्सलाम की कोई चीज भी हम आज पा नहीं सकते, कोई लोग होते हैं वो भागे जाते हैं, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक है उसको देखने जा रहे हैं, कहीं मुंह मुबारक है आपका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है उसकी मोहब्बत में भागे जा रहे हैं किसी म्यूजियम में देखने, फिर भी उसको ना टच कर सकते हैं ना बस देख सकते हैं कि पड़ा हुआ है उसके अंदर एक बाल, और वल्लाहु आलम कितना हद तक ये ऑथेंटिक भी हो कि हाँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक ही है नहीं, फिर आपका प्याला अगर कहीं पर पड़ा होता है हम दीवाना वार भागते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन वो चीज़ जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम इंसानियत तक पहुंचाया, जिसके लिए तड़पे, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावा में सबसे पहले रखा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा हुआ, जिसको आपने अपने सीने से लगाया और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तक पहुंचाया और आगे पहुंचाने के लिए अपनी उम्मत को हिदायत की, फरमाया कुरान सीखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कुरान सीखो। देखिए आप कुरान को सीखो की हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कुरान पढ़ो, जो शख्स इसे सीखता है पढ़ता है फिर इस पे अमल करता है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मुश्क से भरा हुआ बर्तन, मुश्क होती खुशबू जिसकी खुशबू हर तरफ महक रही है, तो क्या फरमाया कि कुरान सीखो कुरान पढ़ो, ये आपके नबी की हिदायत है। वो जिस कलाम के लिए उन्होंने खुद फरमाया, ने ये नहीं फरमाया मेरा प्याला लेके फिरना उसको देखने आया करना, मेरा बाल होगा कहीं उसको देखने आया करना, मेरा कुर्ता अगर तुम्हें, ये भी मेरी निशानियां हैं इनको देखने आया करना, ठीक है उनसे हमें मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए तड़पते रहे जिसको आगे पहुंचाना उन्होंने अपना मिशन बना लिया, इसी कुरान के जरिए वो लोगों को हिदायत का पैगाम अल्लाह ताला का पैगाम देते थे ना, यही कुरान है ना, इसी को सीखने का हुक्म दिया ना, उसकी तरफ हमारी लीज तवज्जो है, इससे हमें मोहब्बत नहीं है, हम एक प्याले को देखने के लिए जा रहे हैं, इतने दूर का सफर कर रहे हैं, ये कुरान हमारे घरों में पड़ा हुआ है, इसके लिए हमारी दिल में कितनी तड़प है कि मैं इसको सीख लूं, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि इसको सीखो, और क्या फरमाया कि कुरान करीम को तलब करना, इसका इल्म हासिल करना, फरमाया फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, फरीजा है हर मुसलमान पे, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हम कहते हैं ना अच्छा ये क्या तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, ये हदीस नहीं सुनी कि इल्म को तलब करना, तलब करना मतलब इसको, इसकी चाहत रखना, इसको शौक रखना, इसके लिए मेहनत करना, तलब करना चाहिए। हम आज तलबे डॉलर तो हैं, तालिबे डॉलर सब बने हुए हैं, तालिबे और भी चीजें हैं, जितनी दुनिया के खजाने और दुनिया की फेम है या और चीजें हैं, उनकी तलब के अंदर तो हम बड़े भागते फिरते हैं और बड़ी मेहनतें करते हैं। लेकिन फरमाया इल्म को तलब करना, इसको सीखना, ये फरीजा है हर मुस्लिम पे। क्या ये हदीस हमें नहीं पता? जब इंसान इसको सीख लेता है, इसको समझने लगता है, तो क्या फरमाया इसकी मिसाल कैसी? मुश्क से भरा हुआ बर्तन, आप ना खुशबूदार बर्तन बन जाएंगे, आप परफ्यूम की समझ ले बॉटल बन गए। आप जिधर जाएंगे आपकी खुशबू से आपके इर्द गिर्द का माहौल महक उठेगा। और इसको सीख के सो जाने वाला, यानी क्या मतलब सो जाने वाला, यानी इसको सीख के उसके बाद परवाह ही नहीं की, इसका कोई होश नहीं है, इसके एक मुताबिक नहीं चला, इसको भुला दिया, इसको एक तरफ रख दिया, या इसके बाद दोबारा इसको पढ़ा ही नहीं, सीख के सो जाने वाले, सो जाना गफलत की अलामत है ना, कि इंसान गाफिल हो गया इससे। इसकी मिसाल उस बर्तन की सी है जिसमें मुश्क तो भरी हो लेकिन ऊपर से मुंह बंद कर दिया, क्यों? उसकी खुशबू कहीं पे भी नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। तो आपने परफ्यूम की बॉटल बनना है, इसलिए आपको मुश्क नहीं कह रही, क्योंकि अक्सर लोगों को मुश्क का नहीं पता होगा, बर्तन में मुश्क पड़ी हो तो क्या, आप समझ लें आपके घरों में खूबसूरत परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं, बाहर से भी खूबसूरत, अंदर भी उसके खुशबू इतनी खूबसूरत, आप उसका ढक्कन उठा देते हैं या उसको स्प्रे करते हैं तो सारा माहौल महक उठता है। वही आपकी मिसाल बन जाएगी जब आप कुरान से जुड़े होंगे, जब आप कुरान को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे, जब आप कुरान के अपनी मशगूलियत बनाएंगे, जैसे हमने आज फोन को अपनी मशगूलियत बना लिया, हम निकालते हैं फोन, जल्दी से फोन देख लूँ, जल्दी से कोई मैसेज तो नहीं आ गया, इसी तरह हर दफा हम कुरान की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से अपना कुरान का एक ही सफा देख के इसको दोहरा लूँ, ये मेरा आज का लेसन था इसको दोहरा लूँ, इसका वर्ड मीनिंग याद कर लूँ। अच्छा 1 मिनट मिला, 1 मिनट में भी कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड्स हैं, 60 सेकंड के अंदर दो तीन लफ्ज तो याद हो ही सकते। अल्लाह अकबर। फिर देखें इसका कितना बड़ा मकाम है कुरान के साथ मशगूल होने का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये हदीसे कुदसी, हदीसे कुदसी कौन सी होती है जिसमें अल्लाह ताला कुछ फरमा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, कि जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मेरा जिक्र ना कर सका और मुझसे दुआ ना कर सका, हम कहते हैं ना अब मैं कुरान में इतनी मशगूल हो गई, देखो मेरे से दुआ का भी टाइम नहीं मिला मुझे, इस बाकी जिक्र अस्कार करने का भी टाइम नहीं मिला, मैं उसको दुआ करने वालों से भी ज्यादा अता फरमाऊंगा। अल्लाह हु अकबर। तिरमिजी की ये रिवायत है। तो और क्या चाहिए कि कुरान में आप मशगूल हैं और आपने मांगा भी नहीं और अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है। कयामत के दिन भी कुरान जैसी सिफारिश कोई और नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है ना, तो इसकी जुर्रत होगी कि अल्लाह ताला के सामने बोल सके, कोई और बोल नहीं सकेगा, किसी और की हिम्मत नहीं होगी। ये इमाम बनेगा उस दिन, ये अल्लाह ताला के आगे झगड़ा करेगा, ये इंसान की बख्शिश के लिए सिफारिशें करेगा, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको बख्श दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। तो क्या फरमाया? क्या रमजान में पढ़ा करो? क्या हफ्ते में एक दफा पढ़ा करो? रोज इस कलामे पाक को खोलना, ये कलाम और रहमान है, ये सिफत और रहमान है, ये बड़ा वफादार साथी है, हर साथी साथ छोड़ जाएगा, मगर ये वो साथी है जो कब्र में भी साथ जाएगा। कौन मेरे साथ कब्र में जाएगा बताएं? जिस जिस के लिए भी आप आज वक्त निकाल रहे हैं, इनमें से कौन आपके साथ जाएगा? आपका घर जाएगा, आपकी गाड़ी जाएगी, आपके जेवर जाएंगे, आपके कपड़े जाएंगे, आपकी दोस्तें जाएंगी, आपके बच्चे जाएंगे या शौहर जाएंगे, कौन जाएगा आपके साथ? कोई भी नहीं। या ये पैसा जाएगा, हाँ, मगर कुरान वो साथी है जो जाएगा, और फिर जाकर वहां पर भी कब्र से में अजाब आने लगेगा सर की तरफ से, तो ये उसको रोक देगा कि ये बंदा कुरान पढ़ा करता था। और जब सौखा होगी, सख्त चीख, कयामत का दिन आ जाएगा, हर कोई भागेगा अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बाप से, लेकिन जिसका ताल्लुक कुरान के साथ होगा वो अकेला नहीं होगा, ये उसका साथी बन जाएगा वहां पर, ये उसके साथ खड़ा होगा वहां पे, वो कभी तन्हा नहीं होगा, ना कब्र में उसका साथ छोड़ेगा और ना ही कयामत के दिन। बल्कि इसके लिए जिसने कुरान को आगे रखा और इसके पीछे चला, इसको इमाम बनाया, यानी इमाम वो होता है ना, वो जैसे वो करता है आप वैसे कर रहे होते हैं, इमाम रुकू में गया, सजदे में गया, आप भी रुकू में और सजदे में, उसकी एक अल्लाह अकबर पे आपको पता है कि जो ये कह रहा है इसके ऊपर मैंने एक्शन वैसे ही लेना है। कुरान के आगे जो ऐसे होगा कि इसको अपना इमाम बना ले, तो कयामत के दिन ये उसको जन्नत तक लेकर जाएगा, और जिसने इसको पीछे रखा तो कुरान उसके खिलाफ गवाही देगा कयामत के दिन, और कहेगा कि अल्लाह इसने मुझे पसे पुश्त डाल दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान कयामत के दिन या तो तुम्हारे हक में हुज्जत होगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत होगा, खिलाफ उसके होगा जिसने उसको पीछे डाला हुआ था, इसको ना सीखा ना समझा ना कभी इसके लिए वक्त निकाला। तो कुरान के लिए वक्त निकालना हमारी जरूरत है, ये फालतू का काम नहीं है, ये वो चीज नहीं है कि जो इंसान सोचे कि चलो पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कौन सा ऐसा हरज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह फुरकान में ये आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन उठ के खड़े होंगे और फरमाएंगे या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को पसे पुश्त डाल दिया था, शिकायत करेंगे उनके खिलाफ जिन्होंने इस कुरान को आगे नहीं रखा, जो इस कुरान को कुछ सही समझते, जो इस कुरान के लिए वक्त नहीं निकालते थे, उनके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, जिनके लिए हम सोचते हैं ना कि वो हमारी उस दिन सिफारिश करेंगे, वो उल्टा शिकायत करेंगे। अल्लाह अकबर। और अगर आप जानना चाहते हैं आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, उलमा कहते हैं अगर आप ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है ना, अल्लाह ताला मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कैसे मुझे पता चले? तो ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला आपको बड़ा सोने चांदी दे देगा और आपको बहुत कुछ दुनिया की चीजें दे देगा, नेमतें दे देगा, बल्कि क्या है, अल्लाह ताला आपको अपने कलाम का फहम दे देगा। और आप अगर जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है, तो उलमा कहते हैं ये देखो कि तुम अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते हो। और अब हम कैसे नापें कि हमें अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, अब मेरे पास कोई आला तो है नहीं जिसे नापूं, तो उसका एक तरीका है, उलमा कहते हैं आप देख लें कि आपके दिल में कुरान की मोहब्बत कितनी है, उतनी आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है और उतनी ही अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। जाहिर है जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी कैसे हो सकता है उसको उसके कलाम से मोहब्बत ना हो, जिसको अल्लाह ताला से कि यानी इतना उसकी चाहत होगी उसको कुरान की भी चाहत होगी, तो ऐसे हो नहीं सकता। क्या आपका है मुझे अल्लाह ताला से तो मोहब्बत है लेकिन कुरान के लिए मेरे पास टाइम नहीं है? हसन बसरी तो फरमाते हैं मैं अगर पूरी कायनात का भी मालिक बन जाऊं ना, यानी पूरी कायनात यानी हर चीज जो दुनिया के अंदर है उसका मालिक बन जाऊं, फिर इस सारी को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं ना, तो इससे भी मैं बेहतर समझता हूं कि मैं इल्म का एक बाब सीखूं जिससे मेरी आखरत संवर जाए और वो बाब किसी और को भी सिखा दूं। ये सोचे उन्होंने पूरी दुनिया को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा अहम समझा है, तो ये छोटी बात है। हम सिर्फ सदका करके सोचते हैं ना, तो हम इतनी नेकियां तो कर ही रहे हैं, अब ये पढ़ने की क्या जरूरत है? अबू हुरैरा फरमाते थे, अगर मैं दीन का एक बाब जिससे मेरी दीनदारी बेहतर हो जाए वो सीख लूं और उसको किसी को सिखा दूं, ये मुझे 70 गजवात से भी ज्यादा अजीज है कि मैं गजवे में जाऊं, 70 गजवात में। और गजवा आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करना होता है। इसीलिए अबू दरदा ने फरमाया, ये गौर से सुने, अबू दरदा ने फरमाया जो इल्म सीखने को जिहाद नहीं कहता ना उसकी अकल भी नाकिस है, उसका इल्म भी नाकिस। अगर आप ये समझ देंगे ये जिहाद नहीं है तो और जिहाद क्या है। वो फरमाते हैं फिर उसकी उसकी अकल नहीं है कुछ, उसको फिर उसको कुछ इल्म भी नहीं है जो इसको जिहाद नहीं समझता। लोग सोचते हैं कि जिहाद तो बड़ी, और औरतें कहती हम तो जिहाद हमारे ऊपर तो हम जिहाद करना होता तो हम भी कर लेते और ऐसे होता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मौका आपको दिया, आप इल्म सीख के आप जिहाद कर रहे होते। और अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला में फरमाया ना, वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, इल्म वालों के दरजात बुलंद होते हैं। किसी कौम को, किसी लोगों को, किसी फर्द को दर्जात की अगर बुलंदी चाहिए ना तो वो इल्म हासिल करे, क्योंकि उतुल इल्म दर्जात। अगर आप बुलंद दर्जे चाहते हैं तो इल्म लें, और वहां पे दर्जात ऐसे नहीं होंगे जैसे दुनिया में आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि चलो थोड़ा सा कोई एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है, उसका घर वहां पे है, इसका घर यहाँ पे है, कोई गरीब है तो चलो उसका घर एक झोंपड़ी है, तो हम कहेंगे भाई बहुत दर्जे ये इस स्टैंडर्ड का या इस स्टेटस का है। वहां पे स्टेटस का बहुत फर्क होगा। कैसे? एक स्टेटस वाले, स्टेटस इसलिए कह रही हूँ कि दर्जों की शायद आपको समझ ना आए, एक स्टेटस वाले दूसरे स्टेटस वाले को पता है कैसे देखेंगे? जैसे आप जमीन पे बैठ के आसमान के सितारों को देखते हैं, ऐसे उनको नजर आएगा दूसरा स्टेटस, अपने से अबव स्टेटस, वन अबव स्टेटस पे भी इतना ज्यादा फर्क होगा कि उनको वो सितारे जो है ना वो उनके महल हैं, वो उनके महल नजर आएंगे कि वो देखो उसका महल। इतने ज्यादा दर्जात का स्टेटस का फर्क होगा जन्नत में। तो अगर आप ऊंचे दर्जे पाना चाहते हैं, ऊंचे मकाम पाना चाहते हैं, तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। ओके, इसी इल्म के जरिए आप अपना मकसद हयात जानेंगे जो कि इबादत है। हमारा मकसद दुनिया में आने का, अल्लाह की इबादत करना है, ये मकसद आप इसी तरह जान सकते हैं जबकि आप इल्म हासिल करें। और जिसके पास इल्म नहीं उसको ना अपना मकसद हयात पता है, ना उसको पता है किस तरफ चलना है, ना उसको पता है अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद क्या है, वो अपने आप को समझता है वो बहुत इल्म वाला है। लेकिन आज याद रखिए एक बात, आज जब आप ये सफर शुरू करने लगे, चाहे पहली दफा कर रहे हैं, चाहे चार चौथी दफा, चाहे कितनी दफा पहले पढ़ चुके, आपको हमेशा ये लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। हर दफा कुरान से आपको इतना कुछ मिलेगा या आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और मैं खुद भी अपने आप के लिए भी कहती हूँ, जब भी मैं पढ़ती हूँ सोचती हूँ ये तो मुझे आता ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें जिंदगी में अगर लाजिम पकड़ना है तो अल्लाह के कलाम को लाजिम पकड़ो, और ये कर लोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और इकराम और एहतराम तुम्हें मिलेगा। और जमीन पे ही नहीं, आप जमीन पे चलते होंगे और आपका जिक्र आसमानों में होगा, ये अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की मजलिस में उसका जिक्र करता है जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। इससे बढ़ के जिक्र और क्या हो सकता है जो कलामे पाक है अल्लाह ताला का। आप दुनिया में देखते हैं ना कि हम अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए एक साउंड सिस्टम लगाते हैं, उसका इंतजाम करते हैं कि हमारी बात दूर तक पहुंच जाए, फिर जब टाइम आता है वो फंक्शन आता है तो कोई मसला हो जाता है साउंड सिस्टम में, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, और वो आवाज ही खराब हो जाती है। लेकिन सुभान अल्लाह, आप जमीन के ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, इसको समझ रहे हैं, कोई साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं। आसमानों पे अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की मजलिस में आपका जिक्र कर रहा है।
और आसमान, ये पहला आसमान ही 500 साल की मसाफत है, उस दूसरा उससे 500 साल ऊपर, तीसरा उससे 500 साल ऊपर। खुशकिस्मत कितना है वो इंसान जिसका नाम वहां लिया जा रहा है, सातवें आसमान पर, यहाँ पे अल्लाह ताला फरिश्तों में उसका जिक्र फरमा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो वहां पर जन्नत में कुरान की आवाज सुनाई दी कि कोई कुरान पढ़ रहा है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये किसकी आवाज है, फरमाया ये आपके सहाबी हारिसा बिन नुमान की आवाज है, वो जमीन पे कुरान पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज जन्नतों में आ रही। अल्लाह हू अकबर, ये है अल्लाह ताला जब प्रोटोकॉल देता है ना तो वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप इन चीजों के पीछे रीछते हो, थोड़े थोड़े आपको कोई इज्जत दे देता है, कोई थोड़ा आपको कोई पूछ लेता है, कोई आपको साहिबा कह देता है, कोई आपको बड़ी इज्जत से बिठा देता है, आपको लगता है कि ये बड़ा प्रोटोकॉल है, ये तो कुछ नहीं है। जब अल्लाह ताला आपको प्रोटोकॉल देगा ना तो आप दंग रह जाएंगे और शुक्र अदा करेंगे इस वक्त के ऊपर जो आपने कुरान के लिए निकाल लिया। आप यकीन करें आप शुक्र अदा करेंगे और आप सोचेंगे कि काश मैं और वक्त देती, मैंने थोड़ा क्यों दिया। आपको जो चीज मिलने वाली आज आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत पता भी है ना उनको भी अंदाजा नहीं है कि उनको मिल क्या रहा है। हाँ, मगर जब कुरान वाले को अल्लाह ताला अपने पास बुलाने भी लगता है ना तो उसको बड़े प्रोटोकॉल से बुलाता है, उसकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जब फरिश्ते नाजिल होते हैं ना तो फिर जन्नत की खुशबू लाते हैं, जन्नत के कफन लाते हैं, मलकुल मौत उनको आते ही बशारतें देता है, चल अल्लाह की रजा की तरफ, चल मगफिरत की तरफ है पाकीजा रूह। कब्र में जब डाला जाता है, लोग तो चले जाते हैं ना, मैंने आपको बताया कुरान कहता है ना अजाब आते वक्त के कुरान कहता है रुक जाओ यहां से नहीं आना, ये कुरान पढ़ता था। अब उसके बाद जो मुनकर नकीर सवाल जवाब करने आते हैं तो आपको पता है जब वो सवालों के जवाब सही सही दे देता है तो वो उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता ये हदीस में है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं आपको बता रहा, हदीस में है, वो उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता है, तो वो जानते क्या जवाब देता है पता है आप लोगों को, वो कहता है मैं कुरान पढ़ता था और इसके मुताबिक अमल करता था और मैंने उसकी तस्दीक की थी। अल्लाह हु अकबर। और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने सच कहा, जब वो ये कहता है ना मैंने इस कुरान को पढ़ा था इसलिए मैंने जवाब दिया और मैंने इसकी तस्दीक की थी, तो अल्लाह ताला फरमाता है हाँ मेरे बंदे ने सच कहा। लोग तो उसको छोड़ के चले गए कब्र में, वो जो चादरों में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उस वक्त फरमाता है कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा जो उसको इनामात वहां देने, अच्छा कब्र में भी अल्लाह ताला फरमाता है इसको जन्नत का लिबास पहना दो। इसको वो मिट्टी में डाल के गए थे और अब अल्लाह ताला इसको ये फरमाता है इसको जन्नत का लिबास पहना दो और फरमाता है इसके नीचे जन्नती बिछौना बिछा दो। वो तो जमीन में गड़े में डाल के चले गए। ये जो मेहनत आज है ये कहाँ तक इंसान को फायदा देगी ये आप सोच नहीं सकते। और अल्लाह ताला फरमाएगा इसकी कब्र को खोद खोल दो, कितनी खोली जाए, अल्लाह ताला फरमाएगा जहां तक इसकी नजर जाए हद्दे निगाह तक इसकी कब्र को खोल दिया जाए। और सिर्फ कब्र नहीं खोल ली जाएगी, जन्नत का एक दरवाजा भी खोल दिया जाएगा या एक खिड़की भी खोल दी जाएगी जिससे उसको जन्नत की खुशबुएं आएंगी, जन्नत की हवाएं आएंगी। तब वो कहेगा या अल्लाह जल्दी कयामत कायम हो जाए तो मैं इस जगह पे चला जाऊं और मैं अपने घर वालों को भी बताऊं कि मुझे क्या इनाम मिल गया है। तो बड़ी आला हस्ती है वो जो कुरान सीखे, जो कुरान को पढ़े, जो कुरान के लिए वक्त निकाले,
ये प्रोटोकॉल कब्र में इसको दिया जा रहा है। वो चाह रहा है कि मैं लोगों को जाके बताऊं मुझे क्या क्या इनाम मिल गया। मगर फरिश्ते फिर उसको कहते हैं सो जा, अब तो दुल्हन की तरह सो जा। उधर जब कयामत कायम होगी, हर तरफ हौलनाकी होगी, लोग कब्रों से उठेंगे, हालत ये होगी कि हर कोई घबराहट में होगा, कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। इतने में एक खूबसूरत आदमी आला लिबास में होगा, चेहरा खूबसूरत शानदार लिबास पहने हुए खुशबुओं में नहाया हुआ आएगा। आदमी कहेगा तू कौन है? वो कहेगा मैं कुरान हूं, मैं वो ही हूं जिसको तू पढ़ा करता था। अल्लाह अकबर, मैं तेरा साले अमल हूं जो तू कुरान की वजह से किया करता था। और उसको लेकर चलेगा, उसके साथ साथ रहेगा। और ये दिन जो 50,000 साल के बराबर, ये कुरान को सीखने समझने और इस पर अमल करने वाले के लिए सुकड़ के इतना हो जाएगा जितना जुहर से असर का वक्त। फिर सफ़े बनाने का हुक्म होगा, सारी इंसानियत जमा होगी, सब सफ़े बना रहे होंगे, कुरान के पढ़ने वाले जो होंगे, इसमें महारत हासिल करने वाले जो होंगे, उनकी सफ़े जानते हैं किनके साथ होंगी? जिब्राइल के साथ, मीकाईल के साथ, इसराफील के साथ। क्या कमाल का प्रोटोकॉल है! आज लोग तरसते हैं किसी बड़े आदमी के साथ एक सेल्फी बनाने के, एक पिक्चर बनवा दें जिसको अल्लाह ताला फरिश्तों की सफ में ले जाके खड़ा कर दे, किरामन कातिबीन के साथ खड़ा कर दे, अपने मुअज्जज फरिश्तों के साथ खड़ा कर दे। उसका क्या मकाम होगा, उसकी कितनी बड़ी बात होगी उस दिन! इंसानियत ऐसे खड़ी होगी कि ना पैर में जूता ना बदन पे लिबास। कुरान कहेगा ए अल्लाह इसको मुजय्यन करते हैं, कुरान सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह इसको मुजय्यन कर दे, खूबसूरत बना दे, तब इसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा अल्लाह इसको और मुजय्यन कर दे, तो इज्जत वाले हुल्ले पहनाए जाएंगे, यानी लिबास पहनाया जाएगा। फिर देखिए सारी इंसानियत देख रही, सिर्फ इसको नहीं, फिर कहा जाएगा इसके वालदैन कहाँ है, वालदैन को लाया जाएगा, उनको ताज ऐसा पहनाया जाए कि सूरज की रोशनी भी आगे मांद पड़ जाए उस ताज के। सारी इंसानियत देख रही होगी। ये क्यों कहा गया सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए, यानी सबके लिए वो इतनी अट्रैक्शन का बायस होगा, सब उसकी तरफ निगाहें किए होंगे, वो फोकस सबका बन जाएगा, निकाह का मरकज बन जाएगा ये खानदान। दुनिया सारी की सारी भी बेच दी जाए ना, उस ताज के एक मोती की कीमत अदा नहीं हो सकती। और यहां तक अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी कुरान अल्लाह ताला के आगे जिद करेगा, कहेगा या अल्लाह इसको और अता फरमा, और अता फरमा, और इससे राजी भी हो जा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं इससे राजी हो गया। जाहिर है अल्लाह ताला राजी था ही, तो इसको इज्जत का लिबास पहनाया गया, इसको इज्जत का ताज पहनाया गया। लेकिन अब ये क्यों कहलवाया गया है, ये क्यों बताया गया है? ताकि सारी दुनिया गवाह हो जाए, सबको पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने इसको इतना बड़ा इनाम दिया कि इससे राजी हो गया। और यही मेरी और आपकी तड़प होनी चाहिए, और आखिरी सांस तक इसी तलब को पूरा करने के लिए हम लगे रहे इस रास्ते पे, कि क्या वो दिन होगा जब कुरान मेरी और आपकी भी सिफारिश करेगा कि अल्लाह इससे राजी हो जा, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, और सारी दुनिया के सामने अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाएगा कि मैं इस बंदे से राजी हो गया। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा चल ए हामिले कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। तो ये मामूली बात नहीं, ये कितना बड़ा मकाम है, ये कितनी बड़ी फजीलत है, और ऐसी फजीलत कि ये किसी और कलाम के लिए नहीं है, किसी और कलाम के लिए नहीं।
अगर कोई इंसान समझता है कि ये काफी है मेरे लिए और बस इतना ही एक दफा पढ़ लेना काफी, मैंने तो एक कोर्स किया है, मैं तो फलां कोर्स कर चुकी हूं, इल्म हासिल करके जो इसको छोड़ दे वो वापस जहालत में चला जाता है। हम अक्सर देखते हैं वो ही लोग जो कहते हैं हमने फलां जगह से कोर्स किया, वो ही कोई गलत काम कर रहे होते हैं, फिर लोग कहते हैं ये तो इसने तो कोर्स भी किया। तो पता क्या चला कि कुरान हमारी जिंदगी की जरूरत है, हर दिन की, हर दिन की जरूरत है, बार बार हमें पकड़ के लाने वाला राहे रास्त पे ये कुरान ही है। किसी और को अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि ये मेरे अहल हैं, ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाले मेरे अहल हैं, रोजा रखने वाले मेरे अहल हैं, सदका करने वाले मेरे अहल हैं, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया कुछ लोग अल्लाह ताला के अहल होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरे अहलो आयाल है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा कुंबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ मेरे अहल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा वो अल्लाह के अहल कौन है? फरमाया अहलुल कुरान व खासा, अहलुल कुरान जो है कुरान वाले, कुरान किसी तरह से भी आप सीख रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, आप इसमें तदब्बुर कर रहे हैं, आप इसको हिफ्ज कर रहे हैं, आप इसको याद इसका माना कर रहे हैं, आप इसकी तफसीरों को पढ़ रहे हैं, कुरान वाले जो हैं वो ही अल्लाह तआला के अहल भी और उसके खास बंदे हैं। और कुरान करीम के तालिबे इल्म जो है उसकी अजमत पे मबनी एक सच्चा वाक्य मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत बाद की और अदवार का वाक्य है, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नहीं है, ये तो अभी के वाक्यात में से है कि दमिश्क में एक कब्रिस्तान है जिसमें बड़े औलिया उलमा शहदा वगैरह भी दफन है, और दमिश्क के रहने वाले इसको जानते भी हैं, यानी सीरिया में है। वहाँ एक गोरकन था, उसका काम यही था, अरसा दराज से वहाँ पे काम कर रहा था कि कब्रें खोदना। आपको पता है इनका ये काम होता है, तो डे इन एंड डे आउट वो यही देख रहे होते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं होती। उसके पास एक दिन एक औरत आई और उसको कब्र खोदने का कहा, उसने कब्र खोद दी। कुछ देर बाद जनाजा आया, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ चंद ही लोग थे। जनाजे को रख के संदूक खोला गया और मैयत उठा के कब्र में रखने के लिए दी गई। गोरकन जो था वो कब्र में खड़ा हुआ था, उसने जब मैयत को हाथ में लिया और उसको कब्र में रखने लगा, इसी असना में क्या देखता है कि कब्र खुल गई हद्दी निगाह तक, और जैसे एक बाग बन गई, ना मट्टी है, ना घबराहट है, ना वहशत है, खुशबू ही खुशबू और नूर और सुकून। और गोरकन ने देखा कि दो लोग आए हैं, वो सवार हैं और वो मैयत को लेकर गायब हो गए। ये देखना था, वो बेहोश हो गया। अब कब्र के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं नजर आया। उन्होंने जब देखा कि ये बेहोश हो गया, उसको निकाला, उसके ऊपर पानी डाला, होश में लाए। जब वो होश में आया उसने औरत की तलाश की, वो औरत नहीं थी वहां पे। लोगों ने उससे जब पूछा उसने बताया कि ये मैंने देखा। लोगों ने सोचा इसका कोई वहम है इसलिए छोड़ के चले गए। कुछ महीने गुजर गए, उसके बाद वो औरत दोबारा आई और गोरकन से कहा कि तुम कब्र खोदो। कब्र तैयार हो गई, मैयत लाई गई, उसने उसी तरह कब्र में जाके और मैयत को लिया और जब रखने लगा तो फिर कब्र खुल गई और एक जैसे बाग बन गई हो, और फिर वो दो सवार आए और उसको लेके चले गए। इस दफा गोरकन बेहोश नहीं हुआ, फौरन कब्र से निकला और औरत के पीछे दौड़ा, उसको जाके पकड़ा, उसको कहा तुम कौन हो, कहाँ से आई? वो कहने लगी मुझे मेरी मुसीबत में रहने दो। कहने लगा मुसीबत क्या मुसीबत है तेरी?
वो कहने लगी, जिसको तुमने दफन किया ये मेरा बेटा है, और इससे पहले भी मेरा एक और बेटा था जो फौत हुआ। वो कहने लगा, वो पहले वाली मैयत भी तो तू ही लेकर आई थी। कहने लगी, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बोला, पहले को जब मैंने कब्र में रखा तो मेरे साथ ये हुआ, दूसरे को जब रखा तो तब भी मेरे साथ ये हुआ। वो क्या काम ऐसे करते थे? औरत बोली, जो पहला था वो कुरान का तालिबे इल्म था, और जो दूसरा था वो अपने भाई की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करता था। तो देखें, अल्लाह ताला ने तालिबिन और उस पर खर्च करने वाले दोनों के साथ क्या सलूक फरमाया। जब गोरकन ने ये बात सुनी ना, तो उसने तो कब्रिस्तान छोड़ दिया। वो गया, जो आलिम जिन्होंने ये वाकया सुनाया है ना, उनके वालिद और उनके जद्दे अमजद उस मस्जिद में खिदमत किया करते थे, वहां पे पढ़ाते थे। तो इस वक्त उनके दादा वहां थे, शेख साहिद। गोरकन उनके पास गया और बोला, मुझे इल्म हासिल करना है। वो कहने लगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा, यही कोई 45-50 साल हो गई है। वो बोले, अब तुम इल्म हासिल करने आए हो, सारी उम्र तो तुम भूले रहे, क्या वजह है कि अब तुम्हें ये ख्याल आया? उसने कहा, ये मेरे साथ हुआ। हमने कहा, ठीक है, फिर अल्लाह पर तवक्कल करो और जाओ किताबें उठा के लाओ। और वो पढ़ते रहे, याद करते रहे, यहां तक कि वही गोरकन वक्त के बड़े आलिमों में शुमार होने लगे। शेख अब्दुर्रहमान, इनके नाम को दमिश्क के बड़े उलमा जानते हैं, और इसके बाद इनका सारा खानदान इसी रास्ते पे लग गया। इनके आखिरी शेख अब्दुल रज़ाक गफ्फार, वो भी दमिश्क के बड़े उलमा में से थे। तो अल्लाह ताला इल्म के तालिब के साथ ऐसा सलूक करता है, ये कहानी नहीं है, ये ख्याल नहीं है, ये मोतबिर शेख का अपनी आंखों देखा सच्चा वाकया है। और कुरान करीम के इल्म पे लेने पे बड़ी दलील है कि इसकी अजमत कितनी है। जो कुरान का इल्म लेता है ना, वो अल्लाह ताला का बरगजीदा बन जाता है, अल्लाह का प्यारा बन जाता है। और जो उन तालिब इल्मों पे खर्चा करता है, चाहे वो किसी तरह भी उनकी तालीम के लिए पर खर्च कर रहा है, उनकी जहां पे वो बैठते हैं उस बिल्डिंग का खर्चा उठा रहा है, उसको जमीन लेके दे रहा है, किताबें लेके दे रहा है, उस्ताद मुहैया कर रहा है, जो भी खर्चा उठाएगा उसको भी इतना प्रोटोकॉल मिलेगा। और गनीमत जाने इस कोर्स को, वल्लाही ये बहुत बड़ी सआदत है जो आपको मिल रही है, और ये बहुत बड़ा चुनाव है जो आपका हुआ है, सिलेक्शन आपकी हुई है। अल्लाह अकबर। ये थोड़ी सी बातें, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, यानी कुरान करीम के इल्म लेने के ऊपर बेशुमार बातें उलमा ने लिखी हैं, और बेशुमार हमें इसकी फजीलत के अंदर हमें वाकयात मिलते हैं। सिर्फ आखिरी एक बात करूंगी, इमाम जुफर की, जो इमाम अबू हनीफा के खास शागिर्दों में से थे, सारी जिंदगी तालीम हासिल करने में लगे रहे, मगर कुरान पे, जाहिर दीन की तालीम ले रहे थे मगर कुरान पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सके। तो जिंदगी के जब आखिरी 2 साल रह गए थे, तो कुरान की तरफ मुकम्मल तवज्जो की, इसकी सीखने और इसके अंदर ही मतलब तदब्बुर करने में और इसी की समझ में, और इसी में फौत हुए। तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो बड़ी अच्छी हालत में थे, तो फरमाया, मैंने सारी जिंदगी जो मेहनत की थी वो तो मेरे किसी काम ना आई। हाँ, जो जिंदगी के आखिरी 2 साल मैंने गुजारे, अगर जिंदगी के वो 2 साल ना होते तो जुफर हलाक हो गया था। अल्लाह हु अकबर।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सारी दुनिया मलऊन है, यानी इसमें कोई खैर नहीं है दुनिया के अंदर, सारी दुनिया मलऊन है सिवाय तीन चीजों के, अल्लाह का जिक्र और इंसान का तालिबे इल्म होना या मुअल्लिम होना, ये तीन चीजें हैं जो जिनमें सिर्फ खैर है, बाकी खैर नहीं है। आज जो इस उम्मत की हालत है वो इसी वजह से है कि हमने बहुत चीजों को अपना शौक बनाया लेकिन कुरान को सीखने को अपना शौक नहीं बनाया। हम बहुत चीजों के लिए भाग रहे हैं लेकिन कुरान के लिए भागने वाला कोई नहीं, इसके लिए मेहनत करने वाला कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी पेश हुए और उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई जो है वो आपके पास आके पढ़ता है और सीख रहा है और मैं काम करता हूँ और मैं खर्चा उठाता हूँ और ये बस सीखने में लगा हुआ। तो यानी एक तरह से वो शिकायत कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं क्या फरमाया? आपने फरमाया, तुम्हें क्या पता, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क इसी की वजह से दे रहा हो। यानी बाज लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई कुरान को सीखने में लग गया तो इससे बेहतर नहीं था कोई जॉब कर लेता, जॉब में पैसे आने थे ना। मतलब कोई मर्द समझता है कि उसकी बीवी जॉब कर ले, इससे क्या फायदा होगा। तो क्या पता है कि अल्लाह ताला इस आदमी को रिस्क इस औरत के पढ़ने की वजह से दे, हम नहीं जानते। और इसके लिए जो भी निकलता है, इसके लिए जो भी अपना वक्त, अपना सरमाया, अपनी मेहनत लगाता है, तो वो काम कर रहा है जो अंबिया का काम है। अंबिया ने इसी के लिए मेहनतें की हैं, अल्लाह ताला के कलाम को आगे पहुंचाएं, अल्लाह ताला के कलाम को लेके लोगों तक इसको तालीम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इल्म हासिल करो इससे पहले कि इल्म उठा लिया जाए, और इल्म का उठ जाना क्या है, अहले इल्म मिट जाएंगे। ये मैं देख रहा हूं कि तुम उस चीज के पीछे पड़े हो जो तुम्हें जरूर मिलेगी, यानी क्या है वो चीज, रिज़्क। रिज़्क को अल्लाह ताला ने लिख दिया, और उस चीज से बेफिक्र हो जिसको हासिल करना तुम पर वाजिब है, यानी जिसको हासिल करना चाहिए था उससे उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, और जिस जो आपको मिल ही जाना है, जो आपके लिए अल्लाह ताला ने लिख दिया है, उसको लिए हम इतने मारे मारे फिर रहे हैं। इंसान उस वक्त तक इल्म वाला है जब तक वो तालिबे इल्म है, और जिस दिन वो समझ लेता है ना कि मैं बड़ा आलिम बन गया, उस दिन समझ लें कि वो उसका जवाल शुरू हो गया, वो फिर जहालत की तरफ चला गया। कभी भी आप आलिम नहीं बन सकते कुरान के, याद रखें, इसलिए कि ये समंदर है। कोई आप में से कह सकता है कि मैं समुद्र के अंदर गया और मैंने गोता लगाया और मैं मोती चुन के ले आया, सारे के सारे मोती समुद्र के मैंने चुन लिए और मैंने पूरे समुद्र को एक्सप्लोर कर लिया, कोई कह सकता है? नहीं कह सकता ना। इसी तरह ये कुरान वो समुद्र है जिसमें इतने मोती हैं, एक तो हम गहराई तक जाते नहीं, गहराई तक चले भी जाएं तो आप सारी जिंदगी भी लगा लेंगे ना तो सारे समुंदर के मोती नहीं कलेक्ट कर सकते, नहीं आप हासिल कर सकते। इसलिए ये समझें कि इसके साथ आप जितना भी वक्त लगा लेंगे वो कम ही है, ये काफी नहीं है कि आप सोचे बहुत काफी हो गया। अबू मंसूर अल खयात रहिमहुल्ला, उनकी तमाम उम्र कुरान करीम की तालीम और तदरीस में बसर हुई। बेशुमार लोगों ने आपसे कुरान पढ़ा, 70 नाबीना अफराद को भी कुरान सिखाया। रिवायत हदीस में भी बुलंद मुकाम रखते थे, जोहद में भी बहुत आगे थे। जब वफात हुई तो जनाजे में एक दुनिया उमड़ आई। एक यहूदी ने तो जनाजे का मंजर देख के ही उसके दिल की हालत बदल गई, इस्लाम ले आया। मौत के बाद किसी ने देखा उनको ख्वाब में, तो कहा कि आपके साथ क्या मामला हुआ? तो फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने फातिहा सिखाने पे ही बख्श दिया। अल्लाह हू अकबर, इतना कीमती है ये खजाना, इतनी बड़ी यानी इसकी फजीलत है। इसी तरह आपको पता है कि औरतों ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया। शेखा बिनते मोहम्मद अल कासिम अपनी किताब सालेहात में लिखती हैं कि मैं अपनी दादी का कुरान से ताल्लुक बयान करती हूं, तो मैं ये कहती हूं कि उनका साथी कुरान था। वो अपनी जवानी के दिनों में भी घर और खेत के कामों में कुरान पढ़ती रहती थी, और बाज दफा घर वालों के साथ भी इस वजह से बैठ नहीं पाती थी कि कुरान पढ़ना। और अपनी उम्र के आखिरी 20 सालों में, कहती जब वो बच्चों की शादियों से फारिग हो चुकी और दादा भी वफात पा चुके, तो वो सुबह से मगरिब तक का अक्सर वक्त कुरान में ही सर्व करती थी। इसमें वक्फा नहीं देती थी सिवाय नमाज के या खाना खाने के। जोहर के बाद के कैलूला करती थी और घर आए मेहमानों से मुलाकात करती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक दिन इन्होंने उनसे पूछा, अब देखिए ये आज के दौर के लोभी लोग हैं, ये वो पुराने जमाने की बात नहीं हो गई। कह रही है, एक दिन मैंने इनसे पूछा कि आप इतना कुरान पढ़ती हैं तो ऐसा क्यों नहीं करती कि कुरान को लगा ही लें टेप रिकॉर्डर पे और सुनती रहें? तो उन्होंने कहा, अगर तुम भूखी हो तो क्या तुम खाना खाने वाले को देखोगी या उसके साथ खाना खाओगी? मैंने कहा, उसके साथ खाने में शरीक होगी। कहने लगी, यही मामला कुरान का है, खुद कुरान पढ़ना सुनने से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। तो ये एक बेहतरीन साथी है, बेहतरीन साथी। जो कहते हैं ना तन्हाई हमें काटती है, जो कहते हैं हमें तन्हाई में हमारा दिल घबराता है, तो वो कुरान को अपना साथी बना ले, ये बेहतरीन साथी। एक मरतबा किसी औरत ने इन्हीं से पूछा कि बहुत ज्यादा कुरान पढ़ने के साथ आपका सीना तंग नहीं होता? उन्होंने हैरत से पूछा, क्या भला कुरान की वजह से भी सीना तंग हो सकता है किसी का? ओके, अल्लाह का जिक्र तो दिल को सुकून देता है। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया, जिस वक्त उनको कैद कर दिया गया था दमिश्क में कैद खाने में, तो उन्होंने अपने शागिर्द इमाम इब्ने कय्यम से ये कहा था, अपने खत में ये लिखा था कि अल्लाह की कसम, अगर मैं इस केले के बराबर सोना भी खर्च कर दूं तो यहाँ कैद करने वालों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। रब्बे करीम ने इस केले की कैद के दौरान मुझ पे ऐसे ऐसे उलूमुल कुरान के दरवाजे खोले कि इनकी आरजू बड़े बड़े उलमा करते हैं। अब मैं पछता रहा हूं के उम्र का एक बड़ा हिस्सा कुरान के सिवा दूसरी चीजों पे क्यों लगा दिया। ये इमाम इब्ने तैमिया हैं, इमाम इब्ने तैमिया, जिनके तो सारी जिंदगी ही इनकी हदीस और कुरान और फिक और इन सारी चीजों में गुजरी। कहते हैं कुरान के सिवा तो कोई और चीज मुझे लेनी ही नहीं चाहिए। मैं आप पछता रहा हूं कि इसके सिवा मैंने क्यों कोई किसी और चीज में क्यों वक्त लगाया, जबकि इन्होंने कैद में ही 80 दफा कुरान खत्म किया था। लेकिन अब उनको ये हो रहा है कि मैंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी और चीज में क्यों गुजारा। इमाम नववी ने फरमाया ना कि हर वो चीज काबिल मुजम्मत है जो तुम्हें तीन चीजों से गाफिल करते हैं, कुरान से, इल्मे दीन से और अल्लाह के जिक्र से। अगर तुम्हें कोई चीज भी गाफिल कर रही है तो वो काबिल मुजम्मत है। जब आपका ज्यादा वक्त कुरान के साथ गुजरेगा तो तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में गम हल्के हो गए हैं, जितना ज्यादा, सलफ सालिहीन कहते हैं, जितना ज्यादा हम कुरान की साथ ज्यादा वक्त गुजारते हमें उतनी बरकतें हासिल होती जाती। बाज ने कहा, बाज मुफस्सरीन ने, कि हमने अपने आप को कुरान के साथ इतना मशगूल कर लिया कि उससे दुनिया में बरकतें और भलाइयां हमने बढ़ते हुए देखी, कि कितनी बरकत आ गई है। वाकई कुरान की बरकत है, इसे आप देखेंगे कि ये आपकी जिंदगी बरकात से भर जाएगी जितना आप इसके साथ वक्त ज्यादा लगाएंगे। आप जिनके साथ बैठे भी तो उनको चूज करें जो कुरान के हामिल हैं। जैसे हमें पता चलता है ना, एक जगह पे इमाम शाफी ने फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल ना करे उसको दोस्त ना बना, अगर वो आपको लाजमी इससे दूर लेकर जाएगा। अल्लाह हू अकबर। अब हम सोचते हैं देखिए, लेकिन हम इसलिए नहीं इल्म लेते तो फिर अमल करना पड़ेगा, अमल तो हमसे होना ही नहीं है, तो लिहाजा फिर इल्म भी हासिल करने की क्या जरूरत है। तो याद रखें, अरबी का एक मकौला है, कॉल है एक, कि जिसने इल्म हासिल किया और अमल ना किया उसके लिए एक हलाकत तो है, लेकिन जिसने इल्म ही नहीं हासिल किया और जाहिल ही रहा उसका अमल का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, उसके लिए दो हलाकतें हैं। वो हलाकत से अगर बचना है तो इल्म हासिल करेंगे, ये पहली सीढ़ी है, उसके बाद ही अमल के लिए जाएंगे, वो दूसरी सीढ़ी है। और इसका शौक भी रखें, जैसे मैंने अभी आपको इमाम इब्ने तैमिया की बात बताई है ना, उनको तफसीरुल कुरान का इतना शौक था, फरमाते थे बाज दफा एक एक आयत के लिए मैंने 100-100 तफसीरों का मुताला किया है, और मुताले के बाद दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे इस आयत का फहम अता फरमा, ए आदम और इब्राहिम के मुअल्लिम मुझे भी तालीम दे दे। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। और इसी तरह और लोगों की भी वाकयात आते हैं, अब वक्त नहीं है, हम जितना भी आगे करते जाएं, जो कि वक्त की कमी होती तो हम यहाँ तक ही आज इसको रखते हैं और आगे चलते हैं हम अपनी दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें मैंने आपको इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा की फजीलत बतानी है। मगर उससे पहले मैं आपको सूरत और आयत का मतलब बताना चाहती हूँ। तो यहाँ तक हमने कुरान करीम की फजीलत देख ली, और उम्मीद है कि इसके बाद आपने अपने लिए इस चीज़ का अजम कर लिया होगा कि अब इल्म हासिल करना है और इससे हटना नहीं है, और इसके लिए अना को अपना मसला नहीं बनाना। अना अगर आ गई ना कि मुझे तो ऑलरेडी इतना आता है तो लिहाजा इसलिए मुझे क्या जरूरत है और लेने की, और या फिर मुझे तो पहले ही बहुत कुछ पता है, वैसे मैंने ऐसे कोर्स ले लिया है लेकिन आता मुझे सारा कुछ है पहले, अना को इस रास्ते में हायल ना होने दीजिएगा, वरना कुछ इल्म ले नहीं सकेंगे आप। अपनी अना को एक तरफ रख दीजिएगा, और हसूले इल्म के आदाब में उलमा लिखते हैं कि सबर, सबर चाहिए तो सबर आपको करना होगा, सबर के साथ चलते रहना होगा, एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा, आपके अंदर इखलास होना चाहिए। इसलिए नहीं हासिल करें कि मैंने पता नहीं किसी को मैं जवाब दे सकूं मजलिसों में बैठ के, मुझे भी आना चाहिए, जैसे लोग फखर करते हैं अपने इल्म पे, हमने ये ले लिया ये ले लिया और उनको भी इतने इतने सर्टिफिकेट मिल गए मुझे भी मिलना चाहिए, या कुछ, इसलिए नहीं। इखलास, और इखलास ना नियत का काम होता है, अपनी नियतों को खालिस करना। नियत खालिस कैसे करेंगे आप, कि अपनी नियतों में ये रख ले कि मैं ये मुबारक इल्म इसलिए ले रही हूं कि मुझे अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल हो, नंबर टू मैं ये मुबारक इल्म इसलिए ले रही हूं कि मेरे अंदर अल्लाह ताला की खशियत आए, उसका डर पैदा हो ताकि मैं गुनाहों को छोड़ सकूं, इसलिए भी ले रही हूं कि आखरत में मेरे दर्जात बुलंद हो जाए, इसलिए भी मैं सीख रही हूं कि मैं अल्लाह ताला के दीन के ऊपर जो लोग तान करते हैं जो लोग इसके अंदर शकुको शुभात पैदा करते हैं, गलत फहमियां पैदा करते हैं दीन के मामले में, और अपने अकीदे, गलत अकीदे फैला रहे हैं, मैं लोगों को उनके बारे में बता सकूं कि कुरान क्या कहता है, मैं ऐसी नापाकियों को दूर कर सकूं, मैं इतना अच्छी तरह सीखूं कि मैं उनको बता सकूं, मैं जवाब दे सकूं, और इसलिए भी मैं इल्म ये हासिल करूंगी कि मैं गुमराही से बच जाऊं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, तुम दो चीजों को थाम लोगे तो गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें क्या थी? कुरान और सुन्नत। और इल्म है ही क्या? जब पूछा गया किसी से कि इल्म क्या है, गालिबन हजरत उमर से पूछा गया था कि इल्म क्या है, तो फरमाया वो जो कुरान है, जो अल्लाह का कलाम है, और वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और इसके बाद वो जो कि तुम कहो कि मुझे नहीं इल्म, यानी आपको नहीं पता तो कह दो कि मुझे नहीं इल्म, ये भी इल्मी है, बजाय गलत चीजें लोगों को बताने के। और इमाम इब्ने जौजी ने फरमाया जब उनसे पूछा गया कि इल्म क्या है, तो फरमाया जो अल्लाह ताला ने फरमाया यानी कुरान, और जो रसूल ने फरमाया यानी हदीस, और जो सहाबा ने फरमाया यानी उनके जो तफसीर या उनके जो अकवाल हम तक पहुंचते हैं सही सनद से, दैट्स इट। उसके बाद ही सेज और शी सेज और फलां ने बताया और फलां ने ये कहा, वो इल्म नहीं है। इल्म, असल इल्म क्या है? कुरान हदीस और सहाबा के अकवाल, बस। ये खैरुल करून है, ये बेहतरीन जमाना था, इसमें जो हम तक पहुंचा है वो ही असल है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी मिलावटें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि लोगों ने बाद में शामिल कर ली हो, उनके ऊपर नहीं जाना। तो अपने आप को ये भी नियत इसमें शामिल करें कि मैंने, ताकि मैं गुमराही से बच सकूं, तो इसलिए मैंने ये इल्म हासिल करना है, मैंने ये इस इल्म इसलिए भी हासिल करना है कि मेरे जरिए से आगे मेरे खानदान तक ये इल्म पहुंचे, मेरे जरिए से आगे मेरे इर्द गिर्द वालों तक मेरी खुशबू पहुंचे, मैं खुशबू की वो बर्तन बन जाऊं, वो खुशबू को उठाने वाला, खुशबू में बसी भी वो हस्ती बन जाऊं कि मेरे जरिए से मेरे इर्द गिर्द सब तरफ खुशबू ही खुशबू फैल जाए, और मैं इसलिए भी इल्म हासिल करूं ताकि मैं जिहालत से निकल के और मैं नूर में आ जाऊं, क्योंकि ये कुरान अन्नूर है। देखिए, आप एक से ज्यादा आप इसके अंदर नियतें करेंगे, सिर्फ एक नियत नहीं आपने करनी, क्योंकि जितनी ही ज्यादा आपकी नियत होंगी आपका अजर उतना ही ज्यादा है, आपकी ये सारी नियतें होनी चाहिए, और उन्हीं नियतों को, ये सिर्फ नियत करके बस भूल नहीं जाना, उन नियतों को जहन में भी रखना है, क्योंकि मैंने नियत की हुई है किस नियत से मैं भाई ये पढ़ रही हूँ, पहले दिन पता होना चाहिए ना किस नियत से पढ़ रही हूँ, और इस नियत से मैं ये इल्म हासिल करना चाहती हूँ, ताकि ये इल्म मेरे सीने की बीमारियों को और रूहानी जिस्मानी सब बीमारियों को दूर कर दे, क्योंकि ये इल्म शिफा है, अल्लाह ताला ने इसको शिफा करार दिया है, और इसलिए भी मैं ये इल्म हासिल करना चाहती हूँ कि मैं जानूं कि अल्लाह ताला की पसंद नापसंद क्या है, मेरा रब राजी किस चीज़ से होता है और नाराज किस बात से होता है, ताकि मैं उस पर अमल करूं। इसलिए भी मैं ये इल्म ले रही हूँ ताकि मेरा अकीदा पुख्ता हो, सही हो, और मैं इसके मुताबिक अपने अखलाक, अपने आमाल, अपने किरदार को ढालती चली जाऊं, और मैं इसलिए भी ये इल्म ले रही हूँ ताकि ये इल्म मेरी जिंदगी को संवार दे, दुनिया की जिंदगी भी और आखरत की जिंदगी भी, और मुझसे अल्लाह ताला राजी हो जाए। ठीक है, ये सारी आपने नियतें करनी है, और देखेंगे आपके इन सारी नियतों के बराबर आपको अजर मिलेगा। तो हसूले इल्म के आदाब में से है इखलासे नियत, ये सारी खालिस नियतें हैं, ये सब नियतें आप कर सकते हैं। फिर हसूले इल्म के आदाब में से ये भी है कि इंसान अपना वक्त जाया ना करे, अपने सबक को अच्छी तरह याद करे, इसको दोहराता रहे, अच्छे दोस्त बनाए और अपने उस्ताद का एहतराम करे, ये तमाम आदाब उलमा ने बताए हैं। और याद रखिए एक बात कि इल्म
आराम तलबी से नहीं आता, यानी ये कह देना कि मैं आराम करती रहूं, इल्म खुद ही मेरे अंदर कोई उंडेल दे मेरा दिमाग खोल के, इस तरह से नहीं आता। आप देखेंगे कई लोगों के बारे में आता है कि उन्होंने इतने इतने सफर किए इल्म के लिए, जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला बिन उनैस की तरफ एक एक हदीस, सिर्फ एक हदीस पाने के लिए 1 महीने का सफर किया। और आपको पता है उस जमाने में सफर कितने मुश्किल होते थे। आप बुखारी की जिंदगी देखें, कैसे वो सफर में निकले और कहाँ कहाँ तक पहुंचे एक एक हदीस लेने के लिए। तो आपको तो फिर भी बहुत आराम से ये इल्म हासिल हो रहा है, लेकिन बाज दफा आराम से जो चीज मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। फिर जो चीज मुश्किल से मिली होती है उसकी कदर आती है। तो बजाय इसके कि हम जो चीज हमें आराम से मिल रही है इस पे और शुक्र अदा के करके और इसके ऊपर और मेहनत करें, हम और आराम करने लगते हैं और कहते हैं नोट्स भी कोई और ही बना के हमें दे दे, हमसे तो कुछ नहीं होता, हम हाथ भी हिलाना नहीं चाहते। तो अगर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, कोशिश ही नहीं करना चाहते, आप 1 डॉलर भी कमाने के लिए बाहर जाएं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आराम तलबी से तो कुछ भी नहीं मिलता, दुनिया नहीं मिलती, तो ये इतना कीमती इल्म आपको आराम करने से मिल जाए। तो इसमें कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी, और ये जहन से निकाल देना होगा कि बस आराम ही करते रहे, जैसी जिंदगी चल रही वैसी ही हो, किसी चीज में मुझे कमी ना करनी पड़े, अपने कोई घर के कामों में, अपनी शॉपिंग में, अपने घूमने फिरने में, अपनी पार्टी टाइम में, मुझे कहीं कमी ना करनी पड़े, इल्म भी आ जाए। ऐसे नहीं इल्म आता। फिर हो सकता है आपको कोई सर्टिफिकेट तो मिल जाए, किसी को भी ना पता चले, लेकिन इल्म आपको आएगा नहीं, वो इल्म जो इल्मे नाफे हो, ठीक है। और इसीलिए आपको 2 दुआएं अपने लिए रखनी है कि जो मैंने मांगनी है रोजाना, चाहे आप इसको बना लें अपना नमाज में सलाम फेरने से पहले का हिस्सा, कि सलाम फेरने से पहले आपने ये 2 दुआएं मांग के सलाम फेरा करना। पहली दुआ रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक है। और ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिखाई है खुद सूरह तौहा में, को रब्बी जिदनी इल्मा, ए नबी आप कहें ये बात, ये नहीं कि मुझे माल में इजाफा कर दे, मुझे घर बार में इजाफा कर दे और किसी चीज में इजाफा कर दे, नहीं, इल्म में या अल्लाह मेरे लिए इजाफा फरमा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो बहुत इल्म था, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म अता फरमाया था, फिर भी आपको हुक्म है कि आप ज्यादा इल्म मांगे। हमें भी इस दुआ को जरूर मांगना है। इसी तरह दूसरी दुआ जो बहुत जरूरी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ नाफे इल्म का, नफा बख्श इल्म कौन सा होता है? सबसे पहले तो ये कि जो कुरान का इल्म है यही सबसे बड़ा नफा देने वाला इल्म, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की भलाइयां समेट के ले आता है। और नफामंद इल्म किसको कहते हैं? वो इल्म जिसको हासिल करने के बाद इंसान उस पे अमल भी करे, वो नफामंद इल्म है। आगे भी ये दुआ अगर आप पूरी मांगना चाहें, यहां तक तो जरूर मांगे, व अमल मुतकबलन और इस पन तय्यबा, और अल्लाह ताला मुझे कबूल होने वाला अमल उसकी तौफीक दे, और मैं तुझसे पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता। तो ये दुआएं जरूर आप मांगे। अगर अल्लाहुम्मा फक्किहनी फिद दीन मांग लेंगे तो बहुत अच्छा है, वो भी बुखारी और मुस्लिम में, लेकिन अदरवाइज ये 2 दुआएं आपने जरूर मांगा करनी है, ताकि ये इल्म इल्मे नाफे भी बन जाए और अल्लाह ताला इल्म में इजाफा भी फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। हम सूरह फातिहा की पहले तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसकी फजीलत आपको बताऊंगी। जी, सूरह फातिहा की तिलावत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت الفاتحہ۔ سب سے پہلے سورت کا مطلب۔ سورت کا مطلب بلندی، رفعت، اونچائی، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے۔ اور قرآن کی سورتوں کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، یہ بڑے عظیم مرتبے والی ہیں، اونچی شان والی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان سورتوں کو سمجھے گا، پڑھے گا، سیکھے گا، یاد کرے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، یہ اس کو بھی بلندی پہ پہنچا دیں گی۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کیونکہ سورت خود بھی شان والی ہے، بلند ہے، اونچائی والی ہے، اور پڑھنے والے کو، سیکھنے والے کو، تعلق رکھنے والے کو بھی بلندی پہ پہنچا دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ دیکھ لیں، اسی وجہ سے تو وہ حدیث ہے کہ قاری قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا نا۔ تو اس وجہ سے ان کو سورت کہا گیا، اور اس کی جمع سور ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور المدینہ کہا جاتا ہے، اور مدینہ شہر، یعنی شہر کی فصیل کے لیے، سور فصیل کے لیے کہا جاتا ہے۔ شہر کی جو بڑی بڑی قلعے کی دیواریں ہوتی تھی نا، فصیلیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو سور کہا جاتا تھا۔ جدار ہوتی ہے دیوار، اور سور ہوتی ہے اونچی دیواریں، اور یہ دیواریں بھی شہروں کا احاطہ کر لیتی ہیں نا، تو قرآن کی صورتیں بھی اس کے مضامین کا احاطہ کر لیتی ہیں، سارے مضامین اس کے اندر ہوتے ہیں، یہ جیسے کہ اس کو یعنی انسرکل کیے ہوئے اپنے جتنے بھی اس کے اندر ٹاپکس ہیں ان کو۔ اب آتے ہیں آیت پر۔ آیت، ہر صورت میں آیات ہوتی ہیں، آیت علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آیت پہ کلام ختم ہوتا ہے، پچھلی بات دوسری بات سے جدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں، اور یہ قرآن میں نشانی ہے، یا نشان ہے، یا علامت ہے۔ اور آیت کے معنی عجیب کے بھی ہیں، تو یہ عجیب ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے، تمام انسان اس جیسی بات بنا کے نہیں لا سکتے، اگر مل بھی جائیں تو ایک آیت بھی لا نہیں سکتے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، اور کسی چیز کے بہت سارے جب نام ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی فضیلت اور شرف بہت زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بچے کا ایک نام ہے جو اس کا اصل نام ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو کتنے سارے نام دے دیتے ہیں، تو وہ نام اس لیے کوئی نک نیم ہے اس کا، پپو ہے، کوئی اور ننا ہے، کوئی اور ہے، کوئی گڑیا ہے، اس طرح سے بہت سارے نام دیے ہوتے، تو وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو کہ بڑی فضیلت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی مرتبے والی ہے، اس لیے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو پہلا نام اس کا جو ہم نے لیا ہے، فاتحہ۔ فاتحہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنے والی، और इसको फातिहा इसलिए कहा गया कि कुरान करीम में सबसे पहले यही सूरत है, तो कुरान को शुरू करने वाली ये सूरत है, और नमाज में भी किरात जो है इसी से शुरू होती है। तो ये इसका एक नाम है, आज मैं आपको इसके 10 नाम बताऊंगी। दूसरा इसका नाम उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान, कहते हैं किसी चीज की असल को, यानी जिससे आगे आगे चीजें निकलती ना, मां से निकलती ना आगे औलाद होती है। तो पूरे कुरान में जो चीजों को साबित किया गया है वो इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि अलूहियत को, अल्लाह ताला की जात और सिफात को, बास बादुल मौत मर के दोबारा उठने को, नबुव्वत को, कजा और कदर को, ये सब सूरह फातिहा में है, क्योंकि पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला के इला होने पे दलालत करती है, रहमान रहीम भी इसमें शामिल कर लें, और मालिक यौमिद्दीन इस इंसान को दोबारा उठने का वो बताती है, या का नाबुदु व या का नस्ताईन, हर चीज की कजा और कदर अल्लाह ताला की तरफ से है। और फिर सिराते मुस्तकीम और अनअमता अलैहिम में नबुवत की दलील है, तो इसलिए इसको उम्मुल कुरान कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये जो सूरत है उम्मुल कुरान है और उम्मुल किताब है और सबा मसानी है। ठीक, इसी तरह सूरतुल हम्द भी इसको कहा गया, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्द है और उससे ये स्टार्ट होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारमी की हदीस में इस सूरत को अल्हम्दुलिल्लाह से ही स्टार्ट किया, जैसे मैंने अभी आपको ये हदीस बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल कुरान है, तो इस सूरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सबा मसानी भी फरमाया, सबा सात से, मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली, तो और सना से भी हो सकता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबा मसानी है और कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया, तो कुरान अजीम भी इसको फरमाया और सबा मसानी भी फरमाया और उम्मुल किताब भी फरमाया, किताब की माँ, क्योंकि इससे मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे मजामीन जो कुरान के अंदर हैं वो सब इसके अंदर शामिल है, इस सूरत के अंदर। ये इतनी अजीम सूरत है कि ना ईसा अलैहि सलाम को, ना मूसा अलैहि सलाम को, ना दाऊद अलैहि सलाम को ऐसी सूरत मिली, हत्ता के पूरे कुरान में भी इस जैसी सूरत नहीं, ये इतनी बाबरकत सूरा है, इसीलिए इसको आजम उस सूरा कहा गया, या आजम उस सूर, यानी तमाम सूरतों से की ज्यादा अजमत वाली। और ओम का जैसे मैंने आपको बताया कि मां से ही आगे औलाद पैदा होती है, तो इसके मजामीन से आगे जो मजामीन कुरान करीम में हैं वो इससे ही आगे निकले में, या कह लें कि वो सारे मजामीन का निचोड़ समझ लें कि इसके अंदर है। इसको अलवाफिया भी कहा गया, वफा करने वाली, क्योंकि वाकई ये सूरत इंसान को यानी इसके लिए वफा करने वाली है, बंदे की बख्शिश और निजात का बायस बनने वाली है। कैसे कि अगर कोई बंदा इसके मजामीन को समझ ले और इन पे गौर कर ले, इनके मुताबिक चले, तो ये एक सूरत ही वाफिया है, यानी ये बंदे की बख्शिश और निजात के सबब बन सकती। और इसी वजह से काफिया भी इसका नाम बताया गया कि ये काफी है इंसान की निजात के लिए, और दूसरी सूरतों के जगह पे इस सूरत को पढ़ा जा सकता है। तफसीर कबीर में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल कुरान दूसरी सूरतों का बदला है, दूसरी कोई सूरत इसका बदला नहीं, यानी आप जैसे नमाज में ये नहीं कर सकते मैं चलो सूरह फातिहा की जगह कोई और लंबी सी सूरत पढ़ लूं, ये तो 7 आयतों पे है तो मैं कोई और 50 आयतों वाली सूरत पढ़ लूं वो तो ज्यादा नहीं बेहतर, नहीं, कोई और सूरत इसकी जगह पे काफी नहीं हो सकती। और इसको अशिफा भी कहा गया। ये उन अमराज की भी शिफा है जो जिस्मानी है, और उन अमराज की भी शिफा है जो इंसान के रूहानी अमराज है, क्योंकि इसके अंदर वो यानी काबिलियत कह लें कि ये इसके जरिए आप किसी को दम कर सकते हैं और उसको शिफा हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहतुल किताब हर बीमारी की शिफा है। तो दिल के अमराज की भी, यानी जो दिलों के अंदर कीने हैं, बोझ हैं और कोई ऐसे निफाक है, तो रूहानी बीमारियों को भी दूर करने वाली और जिस्मानी को भी करेगी। फिर सूरत उस सलात भी इसको कहा गया। अल्लाह ताला ने इस सूरत को इसलिए सलात बताया कि ये सूरत वो है कि नमाज की कोई रकत इसके बगैर नहीं हो सकती। आप कुछ और पढ़े ना पढ़े, कोई और सूरत पढ़े ना पढ़े इसके बाद, लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ा तो नमाज ही नहीं होगी, नमाज नामुकम्मल है। फिर ये सूरत तो दुआ भी है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना से शुरू हुई, फिर इसके अंदर आखिर में दुआ मांगी गई है। तो इस सूरत को जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सूरत शिफा भी है और रुकिया भी इसके जरिए किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत है जो रुकिया के लिए भी आप, रुकिया क्या होता है, दम करना, दम करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके जरिए दम कर सकते हैं। और कैसे हमने इसके बारे में हमें दलील मिलती है कि हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम एक सफर पे थे, हमने एक जगह क़याम किया, एक लड़की ने आके कहा कि कबीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया और हमारे लोग हाजिर नहीं है, क्या तुम में से कोई शख्स दम करना जानता है? हम में से एक शख्स उसके साथ गया जिसको इससे पहले हम दम करने की तोहमत नहीं लगाते थे, उसने इस शख्स पर दम किया, यानी इससे पहले वो नहीं दम करता था, पहली दफा किया, जिससे वो तंदुरुस्त हो गया, और इस सरदार ने इसको 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमको दूध पिलाया। जब वो वापस आया तो हमने इससे पूछा, क्या तुम पहले दम करते थे? उसने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा पढ़ के दम किया। हमने कहा, अब इसके मुतालिक कोई बहस ना करो, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनसे पूछ ले। यानी सहाबा कराम ना देखिए इतने केयरफुल होते थे हर हर चीज के अंदर, कि हम ये ना हो कि हमने ये बकरियां ले ली हैं, पता नहीं ये जायज भी है कि नहीं लेना, और इस तरह से दम करना जायज भी है या नहीं, तो हम पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, क्योंकि पहले इन्होंने कभी नहीं ये काम किया था। तो कहते हैं, हम मदीना पहुंचे, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कैसे पता चला कि ये दम है? और फरमाया, इन बकरियों को तकसीम करो और इनमें से मेरा हिस्सा भी निकालो, यानी तो उनको बताने के लिए कि ये लेना कोई भी गलत नहीं है। इससे उलमा ने बहुत सारे मसाइल निकाले हैं, उन्होंने कहा कि ये कुरान पढ़ के दम करने की उजरत लेना भी जायज है, कुरान पाक को पढ़ाना उसके ऊपर उजरत लेना भी जायज है, मुसहफ को कीमतन फरोख्त करना भी जायज है, कि कीमत पे मुसहफ को यानी पैसों के उसके ऊपर कोई हदिया लेके उसके ऊपर दिया जाए, और किसी बीमार को सूरह फातिहा का दम करना भी जायज है, और अगर किसी को शिफा नहीं होती तो इसका मतलब है कि उस बंदे की कमी है, सूरह फातिहा के शिफा होने में कोई कमी नहीं है, इसलिए इसको सूरत रुकिया भी कहा जाता है ना, रुकिया किया गया ना इसके जरिए, तो ये बेहतरीन है रुकिया करने के लिए। इसी तरह इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, हजरत अबू सईद बिन माला रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैं नमाज पढ़ा था, दौरान नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर ना हुआ। मैंने अर्ज किया, जब इसलिए नहीं हाजिर हुए थे कि नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी नमाज खत्म की और आपसे सलम के पास गए। आपने पूछा कि तुम क्यों नहीं आए थे, तो फरमाया मैं नमाज पढ़ा था। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये नहीं हुक्म दिया कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं तो फौरन आ जाओ? तो फरमाया, हाँ, मैं मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मैं तुमको मस्जिद से बाहर निकलने से पहले कुरान की सबसे अजीम सूरत की तालीम दूंगा। फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, जब हम बाहर निकलने का हमने इरादा किया तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने मुझे ये फरमाया था, यानी याद कराया, कि मैं तुम्हें ऐसी अजीम, सबसे अजीम सूरत की तालीम दूंगा। तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये 7 मसानी है और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। तो ये आपने फरमाया, और इसी तरह आपने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे है कुदरत में मेरी जान है, इस जैसी इसकी मिसल तौरात में कुछ नहीं नाजिल हुआ, ना इंजील में, ना जबूर में, ना फुरकान में, यानी ना कुरान में। ये 7 मिनल मसानी है, यानी दोबारा दो दो बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें हैं, और ये कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। ये तिरमिजी की रिवायत है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 7 आयतें बार सबा 7 से मसानी बार बार पढ़ी जाने वाली, और सना से भी माखूज है ये। तो हर नमाज में भी हम इसको बार बार पढ़ते हैं इस सूरत को। और एक और हदीस इसकी फजीलत के अंदर आती है, वो हदीस बहुत ही प्यारी हदीस है, और उस वो मुस्लिम में भी है, नसाई में भी है। और इस हदीस से हमें पता चलता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद नहीं ये सूरत लेकर आए, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे जब ये सूरत नाजिल हुई। मुस्लिम में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे कि ऊपर से इतना जोरदार धमाका हुआ, वो धमाके की इतनी शदीद आवाज थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर देख के फरमाया आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो कभी नहीं खुला। सुभान अल्लाह, क्या समझ आई आपको? वो दरवाजा खुला, आसमान के भी दरवाजे हैं। आज वो स्पेशल कोई दरवाजा होगा जो उस दिन सिर्फ खुला था, और वहां से एक फरिश्ता आया है, वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। एक जगह आता है वो फरिश्ता है जो पहले कभी नहीं उतरा था, एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा खुश हो जाइए, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। दो क्या बताया गया? नूर, सूरते नहीं कहा गया, दो नूर। वो दो नूर क्या है? सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयात। एक एक हर्फ पे नूर है, इतनी अजीम सूरतें। सुभान अल्लाह, कितना मकाम और मरतबा है। इसके बारे में ये कि ये इसका मकाम नजूल क्या है, क्या ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है? तो आपको ये भी मैं बता दूं कि मक्की सूरत उन सूरतों को कहा जाता है जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो ये मक्की सूरत होगी, मदीना में थे तो मदीना मदनी सूरत होगी, ये नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा चुके हैं और मसलन हज करने के लिए आए हैं, और कोई आयत उतरी है, कोई सूरत उतरी है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मक्की होगी क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में है। नहीं, बल्कि हिजरत के बाद जो कुरान उतरा है वो मदनी है। तो इस सूरत के बारे में बाज रिवायात में आता है कि मक्की है, बाज में आता है कि मदनी है, लेकिन ज्यादा ये इस बात समझ आती है कि मुहक्किकीन ने ये कहा कि ये सूरत दो दफा नाजिल हुई है, मक्का में भी नाजिल हुई और मदीना में भी नाजिल हुई, और ये वो वाहिद सूरत है कि जिसके हर आयत के ऊपर अल्लाह ताला खुद बंदे को जवाब देता है। जब बंदा इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला साथ साथ उसको जवाब देता जाता है। तो अल्लाह ताला जब जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की, मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा कहता है अर रहमान अर रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। सोचिए, इंसान सोचता है कि मैं बोल रहा हूँ और अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, और फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मजदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। इसके बाद जब इय्याके नअबुदु व इय्याके नस्ताईन, बंदा कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान यानी तकसीम हो गया, इय्याके नअबुदु अल्लाह ताला के लिए और इय्याके नस्ताईन बंदे के लिए। अब फरमाता है अल्लाह ताला, अब मेरा बंदा जो भी मुझसे मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। फिर बंदा मांगता है अल्लाह ताला से हिदायत, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और दौलीन तक पढ़ता है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ये सब मेरे बंदे के लिए, और ये जो मांगेगा वो उसके लिए। ये इतनी अजीम सूरत है ये, जिससे हम कुरान करीम को शुरू करते हैं। और आप सोच लें कि इस जैसी सूरत तो कोई उतरी ही नहीं, किसी को भी नहीं मिली, और पूरे कुरान में इस जैसी सूरत नहीं है। इसीलिए तो उम्मुल कुरान इसको कहा गया ना, और इसी वजह से इस सूरत को हम हर नमाज की रकत में पढ़ते हैं। यानी जितना हम इस सूरत को पढ़ते हैं उतना किसी सूरत को हम नहीं पढ़ते, क्योंकि जाहिर है इसकी दोहराई होती है बार बार। तो हम इस सूरत को इंशाअल्लाह ताला अगली दफा शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि आप इस सूरत को अच्छी तरह समझेंगे, और फिर इसको समझेंगे भी कि इसमें मेरे लिए दुआ तो है ही, लेकिन ये मेरे लिए काफी भी है, ये मेरे लिए शाफी भी है, शिफा भी इसके अंदर है, मेरे लिए किफायत करने वाली भी है, वफा करने वाली भी है, मेरी नमाज भी यही सूरत है। और ये सारे नाम जो इसके हैं आप इनको, और रुकिया भी मेरे लिए है ये, क्योंकि रुकिया भी मैं इसी सूरत से करूंगी, तो बजाय इसके कि मैं किसी और सूरतों को लूं, इसको मैं यानी रुकिया इसी से आइंदा किया करूं। इस सूरत के बारे में ये आता है कि हजरत अली ने फरमाया था, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो 70 ऊंटों पर लादी जाएगी, इतनी है तफसीर इसकी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा इशा की नमाज पढ़ाकर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा हुए और सूरह फातिहा की तफसीर शुरू की, बिस्मिल्लाह की बा से शुरू की, और फजर हो गई, बा की तफसीर खत्म नहीं हुई। इमाम राजी ने इस एक सूरत से 10,000 मसाइल निकाले, और तफसीर कबीर की पहली जिल्द में सूरह फातिहा को आप देखेंगे पूरी जिल्द इसी के ऊपर है, और ये मुकम्मल सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी करके नाजिल हुई हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना सफर शुरू करेंगे, इल्मी सफर, इस सूरत के साथ जो पहली सूरत है। और ये अगली क्लास में हम तस्मिया और तावुज़ को हम कवर करेंगे। तस्मिया बिस्मिल्लाह को कहते हैं, इसको बसमला भी कहते हैं, तस्मिया भी कहते हैं, इसम से है ना, बिस्मिल्लाह से बसमला, और तस्मिया इसम से कि भाई अल्लाह ताला का नाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और तावुज़ को भी समझेंगे जिससे हमने शुरू करना है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह ताला अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, कि अल्लाह ताला कुरान का सही फहम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि जिसको शायर ने कहा है कि नूरे किरदार से मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। नूरे किरदार से मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अब तिलावत सुनते हैं सूरतुल फातिहा की।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.